युजाहिदूना फी सबीलिल्लाह, वो जिहाद करेंगे अल्लाह के रास्ते में। ये जिहाद का मतलब क्या? जिहाद एक वो लफ्ज है जो सबसे ज्यादा इस दुनिया के अंदर मिसअंडरस्टूड लफ्ज है, इसको लोगों ने समझा ही नहीं, इसको बहुत ही ज्यादा बदनाम किया गया, और आज मुसलमानों को खुद भी नहीं पता जिहाद क्या है। जिहाद है भरपूर कोशिश करना किसी मकसद के लिए, स्ट्रगल करना, बहुत मेहनत करना, एफर्ट लगाना आप उस मकसद को हासिल करने के लिए। उसके रास्ते में आप जो भी रुकावट आए, चाहे आप उसको तलवार से दूर कर रहे हैं, चाहे जुबान से दूर कर रहे हैं, चाहे कलम से दूर कर रहे हैं, अपने इल्म से दूर कर रहे हैं, किसी तरह भी, मगर रुकावट की वजह से खड़े नहीं होना, रुकावट को दूर करना। आज हम कहते हैं कोशिश की क्या जरूरत है, बस नमाज पढ़ ली है ना, इतनी काफी नहीं है, इस रास्ते में कौन सी कोशिश होती। हमें ये तो समझ आती है कि दौड़ भाग हमने करनी है अपने घरों के लिए, दर्जियों की दुकानों पे, ज्यूलर की तरफ दौड़ भाग हमारी है, जॉब्स के लिए दौड़ भाग हमारी है, उस दौड़ भाग को हम अंडरस्टैंड करते हैं, दीन के लिए कौन सी दौड़ भाग होती है ना, हम किसी को देखते हैं करते हुए तो ना हमें इसका कॉन्सेप्ट है, क्योंकि आज के वक्त के अंदर है ही नहीं कोई थकने वाले अल्लाह के रास्ते में जो खुद दिखाएं, कोई रोल मॉडल हो, तो ये चीज ही खत्म हो गई, इसका कॉन्सेप्ट ही नहीं है, बल्कि हैरत होती है। अच्छा वो तो हमें समझ आती है कि कोई औरत सुबह को 5 बजे उठ रही है, छोटे छोटे बच्चे हैं, घर का भी काम है, सब कुछ है, लेकिन वो जॉब पे भी जाती है, घर को भी संभालती है, बच्चों को भी देखती है, मेहमानदारियां भी करती है, सब वो समझ आती है। लेकिन ये क्या बात हुई कि हाँ दीन के लिए इतनी सीख रहे हैं, सिखा रहे हैं, भाग दौड़ कर रहे हैं, इसको फैलाने की कोशिशों में लगे हुए हैं, इसके लिए सुबह से निकलते हैं, शाम को आ रहे हैं, या इसके लिए कोई मेहनतों में लगे हुए हैं, ये समझ में नहीं आता, क्योंकि ये आज रह ही नहीं गया। आज इसके लिए कोशिशें करने वाले, दौड़ धूप करने वाले लोग आपको मिलते ही नहीं है, इसलिए कॉन्सेप्ट ही खत्म हो गया। तो हमें भी हैरत होती है, हमें भी अजीब सा ही लगता है, ये कैसे, वो नहीं हमें अजीब लगते कि वो कैसे ये सब कुछ करते हैं, ये अजीब लगता है कैसे कैसे कर लेते हैं आप, कैसे वो भी तो कर रहे हैं जो दुनिया के लिए भाग रहे हैं, वो भी तो अपने सारे काम कर रहे हैं, उनके भी सब काम होते ही है ना, ये काम में इतनी क्या मुश्किल है, नहीं ये तो वो कैसे कर लेते हैं, हमसे तो नहीं होता, इसी में हमें मुश्किल लगती है। और बाकी सारे काम कभी आप उसको पूछती हैं जो बेचारी सुबह से जॉब पे जाती है और शाम को आती है, बच्चे भी देखती है, घर भी देखती है, सारे और काम भी करती है, कि आप कैसे कर लेती, वो तो सब कर रहे हैं, वो तो नॉर्मल है, ये अब नॉर्मल लगता है। तो ये अब इसके लिए जो एफर्ट करना है ना दीने इस्लाम के लिए, कि अल्लाह की खातिर मैं अपना वक्त लगाऊं, मैं अपनी जान को घुलाऊं, मैं अपनी एफर्ट्स लगाऊं, मैं अपने पास जो इल्म है उसको इस रास्ते के अंदर लगाऊं, ये होता है जिहाद। और इसके लिए कोई मर्द औरत की तख्सीस नहीं है कि औरतें नहीं, वो वाला तो एक किताल है, जिहाद की एक किस्म है जो किताल है जो मर्द करते हैं, कहीं जंग का मरहला आ जाए, लेकिन आज के वक्त में तो ऐसा नहीं कुछ हो रहा। अब आपके पास जो भी एक्सपर्टीज है खपाए उसको, और अल्टीमेट स्ट्रगल का माना आता है इसके अंदर, ये नहीं कि बस थोड़ा सा कर लिया सर से उतारा, ये नहीं है जिहाद। अब लोग चाहे मुखालफत करें, चाहे मेरे पास कोई टाइम है नहीं है टाइम, देखिए वो वाली बात है ना, जहां पे युहिब्बुहुम और युहिब्बुनहू ये वाली चीजें आ जाती ना, वो मोहब्बत करता है इनसे, ये मोहब्बत करते हैं उससे, वहां पे फिर इंसान टाइम नहीं देखता कि वो अच्छा इसके लिए। अब एक औरत अपने बच्चे को पैदा करती है, कितनी एक मुशक्कत उठाती है, पहले 9 महीने पेट में रखती है, पैदा करती है, उसको पालना कितना मुश्किल काम है, कितनी वो अपनी जान खपाती है इसके अंदर, उसका दिन और रात का बिल्कुल स्केड्यूल ही अपसेट डाउन हो जाता है, लेकिन कर रही होती है ना 1 महीना, क्यों, वो मोहब्बत करती है उससे, इसलिए उसके दिल में है वो मोहब्बत, इसलिए उसको वो स्ट्रगल उसके लिए कोई मुश्किल नहीं रहती। जब युहिब्बुना हु आ जाएगा ना, वो मोहब्बत करते हैं उससे, फिर टाइम लगाना मुश्किल नहीं होगा, फिर टाइम देना मुश्किल नहीं होगा, फिर ये सीखना पढ़ना ये कुछ भी मुश्किल नहीं होगा। देखिए आप मुझे बताएं, आपके किसी महबूब का बहुत कोई आपको प्यारा है, ये मैसेजेस आते हैं ना, टन टन बोलता है फोन, तो आपने एकदम फोन पे आपकी नजर पड़ी और आपने देखा कि आप जिससे बहुत मोहब्बत करती हैं उसका मैसेज है। आप मुझे बताएं क्या आप डिले करेंगे उसको पढ़ने में? दिल करेगा ना, सुकून नहीं आएगा कि बस मैं जल्दी से इसको खोल लूं, दिल करेगा इसी वक्त मैं पढ़ लूं उसने क्या लिखा। आप ये नहीं कहेंगे कि अच्छा अभी तो टाइम नहीं है, शाम को आराम से फारिग होके देखूंगी। वो उन लोगों के हम करते हैं जिनका हमें उस तरह से नहीं है, जिसकी हमें बहुत मोहब्बत है, वो हमारा इतना प्यारा है, फिर कितना मर्जी दुनिया की मशगूलियत हो जाए उसको साइड पे रख के हम उसका मैसेज पढ़ते हैं। होता है कि नहीं, बेचैन नहीं रहती जब तक पढ़ना ले, है ना? तो अल्लाह ताला का भी तो ये मैसेज है जो हमारे नाम आया है, ये कुरान की सूरत में। हम 50, 60, 70 साल जिंदगियां गुजार देते हैं, आज तक इस मैसेज को पढ़ने की तौफीक नहीं हुई। अगर उससे मोहब्बत होती तो इससे ज्यादा बेचैनी से, जितना हम मैसेज खोलने के लिए बेचैन होते हैं ना, अगर वाकई अल्लाह से सबसे ज्यादा मोहब्बत होती तो उससे भी ज्यादा बेचैनी से हम उसके कलाम को खोलते। वक्त गुजरने का पता ही ना चलता, कब वक्त गुजर भी गया। उसकी बातें इतनी प्यारी लगती, कभी आप बोर होते हैं अपने प्यारों की बातें करके? नहीं होते, बल्कि सारी रात भी गुजर जाए तो उनसे बात करने में वक्त का ही नहीं पता चलता। असल में मोहब्बतों में कमियां हैं, इस वजह से ये जो ताल्लुक ईमान वालों के साथ भी क्या है, देखिए ना अब यहाँ पे कहा गया अदिल्लतिन, क्या ताल्लुक है? अब हमें क्या पता वो कौन सी जुबान बोलते हैं, वो काले हैं, वो पीले हैं, वो फलां हैं, वो फलां मुल्क के रहने वाले हैं, वो उनके साथ तो हमारी बनती नहीं। लेकिन क्या चीज है जो उनके साथ नरम कर देती है, जो उनके साथ आजिज आजिज मिजाज कर देती है? ईमान का रिश्ता, कि ये मेरे अल्लाह पे ईमान रखते हैं, मैं ये मेरे नबी को मानने वाले, वो जिनसे मुझे मोहब्बत है उनके मानने वाले हैं, ये बस मेरे लिए इतना ही काफी। आप चार चीज से ज्यादा वो महबूब हो जाते हैं, क्योंकि आप फिर छोटी चीजों में नहीं जाते, माइन्यूट डिटेल्स में, कि इसका रंग कैसा है, ये जुबान कौन सी बोलता है, ये कैसा लगता है। नहीं, बस मेरे लिए इतना ही काफी है कि ये मेरे महबूब से मोहब्बत करता है बस। और इसके साथ क्यों है इज्जत? इसलिए कि मेरे महबूब से इसको दुश्मनी है, ये उसको नहीं मानता, इसको मेरे रसूल जो मेरे महबूब है उन उनसे मोहब्बत नहीं है, ये उनसे बुग्ज रखता है, तो मुझे भी इसके साथ कोई लेना देना नहीं है। ये ना ये बातें ना, आपको मैं बताऊं, जो मोहब्बत है ना, इसकी बातें मैं समझा नहीं सकती। अब मैं आपको क्या समझाऊंगी थोड़ी, देखें जो आपके बच्चे से मोहब्बत ना करे आप भी ना उसे मोहब्बत करना, देखें जो आपके बच्चे को बुरा भला कहे ना आपने भी उससे उसके साथ दोस्ती नहीं करनी, देखें ऐसे नहीं होती दोस्तियां। ये कोई बताने वाली बातें? कभी किसी ने किसी माँ को ये समझाया? देखिए जो आपके बच्चे को मारता है ना वो आपका नहीं हो सकता, किसी ने किसी को समझाया कभी? नहीं समझाया ना, क्यों नहीं समझाया? इसलिए कि ये अंडरस्टूड बात है, वो जो मोहब्बत है ना वो करने ही नहीं देती दोस्ती उनके साथ। जो मेरे बच्चे को मारे वो मेरे ही नहीं है, जो मेरे बच्चे को बुरा भला कहें, उसको बदनाम करें, उस पे कीचड़ उछालें, मुझे वो अच्छे ही नहीं लगते। इसलिए नहीं कि वो बुरे, उनकी कोई शक्ल बुरी है, इसलिए कि बस जो मुझे महबूब है ना उसको नहीं महबूब रखते। आपने देखा नहीं है लोग उनके माँ बाप के सामने उनके बच्चों को कितना प्यार करते, सिर्फ इसलिए कि इनके माँ बाप की नजरों में हम उनको अच्छे हो जाए, उनको प्यार करते हैं, उनको गोदों में बिठाते हैं, उनको गिफ्ट देते हैं, सिर्फ उनके माँ बाप की नजरों में अच्छा होने के लिए। अब तो मैं आपको क्या समझाऊं फिर ये बात, कि जिसको वाकई अगर मोहब्बत है तो, मैं दावों की बात नहीं मैं कर रही, अगर वाकई मोहब्बत है ना तो टाइम निकालना मुश्किल नहीं है, एफर्ट करना मुश्किल नहीं है, ईमान वाले को देख के उसके साथ एक मोहब्बत का रिश्ता हो जाना मुश्किल नहीं है, उसके लिए नरम हो जाना मुश्किल नहीं है। कहीं मुसलमान को कोई चोट लगती है तो उससे दिल में दर्द होता है, ये मुश्किल नहीं है। हम कहें हमें क्या परवाह है, आजकल तो मुसलमानों के साथ हो ही रहा है, होता भी रहे जहां जो मर्जी, कश्मीर में हो, जो मर्जी चाइना में हो, जो मर्जी फलस्तीन में, हमें क्या इससे। हम तो इनके साथ भी बना के रखेंगे, उनके साथ भी बना के रखेंगे, हमें तो नहीं ना मार रहे, हमें क्या। नहीं, वो जो ईमान है ना उसने जोड़ा हुआ तुम्हें, वो है मोहब्बत, कि तुम प्रेफर नहीं करते फिर किसी और को उसके ऊपर। तुम्हें उस दूसरे से कोई जाति दुश्मनी नहीं है, कोई जायदादों के झगड़े थोड़ा ही है बस। लेकिन वो मेरे नबी को नहीं मानता, वो मेरे अल्लाह को नहीं मानता, मैं कैसे उसे दोस्ती कर लूं, मैं कैसे इसको हायर कर लूं, मैं कैसे इसको फायदा नफा दूं अपने मुसलमान भाई के ऊपर। देखिए वो लोग जिनका कोई दीन नहीं, बेसलेस है ना, वो भी आपस में एक दूसरे के साथ जुड़े हुए हैं इस बात की वजह से कि बस वो एक मुल्क के रहने वाले। एक हमारे चाइनीज हमसाए में रहते थे, उन्होंने कहा हम अपना काम किसी को नहीं देते सिवाय चाइनीज के। हमारे पास उनका मैगजीन है, उसके अंदर सब चाइनीज की लिखी हुई, वो क्या क्या काम कारोबार करते हैं, हम पहले उनको देते हैं, वहां पे नहीं मिले तो फिर बाहर किसी को देंगे। इसी तरह आप हिंदुओं को देख लो, वो हायर करेंगे तो अपने हिंदू को करेंगे, वो दुकान पे जाएंगे तो अपने हिंदू की जाएंगे, वो डॉक्टर अपनाएंगे तो अपने हिंदू को अपनाएंगे। मुसलमानों में तो कोई तमीज ही नहीं, वो उनको नहीं को फर्क पड़ता। नहीं, हम नहीं डिस्क्रिमिनेशन जी करते, हम तो सबके साथ ओपन है, बात डिस्क्रिमिनेशन की नहीं है ये बात। आप कहें ओ जी आप अपने बच्चे को बड़ा प्यार करती हैं तो ये कर डिस्क्रिमिनेशन हो गई मेरे, ये डिस्क्रिमिनेशन नहीं है, नेचुरल है ये। वो तो नहीं, इसको डिस्क्रिमिनेशन कहते, हम कहते हैं हम डिस्क्रिमिनेशन कर रहे हैं। ये मोहब्बतों की बातें हैं, ये उसको समझ नहीं आएंगी जिसको मोहब्बत नहीं होती। ये मोहब्बतों के सौदे हैं, जो करता है ना वो ही समझ पाता है इसको। फिर ईमान वाला क्यों हर एक से ज्यादा बढ़ के अच्छा लगने लगता है, बस इसके अंदर हजार भी नुक्स है ना, ये है मुसलमान ना, ये मेरे अल्लाह का कलमा पढ़ता है, ये मेरे रसूल के मानने वाला है, ये उनका नाम की तस्बीहें पढ़ता है, बस इसीलिए मुझे प्यार है, वो मुझे और कुछ है ही नहीं। ये है मोहब्बत अल्लाह की खातिर, जिसपे अल्लाह ताला अपने अर्श का साया नसीब करेगा कयामत के दिन, ये है वो मोहब्बत। मुझे दूसरों ने से कोई नहीं, किसी ने मेरा नुकसान नहीं किया, किसी ने मेरे से कुछ हत्याया नहीं है, लेकिन मुझे क्या बुग्ज है, बुग्ज इस बात के ऊपर है कि मेरे अल्लाह को नहीं मानता, मेरे लिए इतना ही काफी। तो ये सबक पढ़ाने वाली चीज नहीं है, ये बस अंदर से महसूस करने वाली चीज है। जब मोहब्बत का जज्बा अंदर आ जाता है ना, तो ये जज्बा बड़ा कुछ करा लेता है, यही फिर डिफाइन कर देता है कहाँ पे मिलना है, कितनी हद तक मिलना है, मिलना भी है तो किसके नाम को बीच में रखना है कि उसका नाम लेने वाला ये भी बन जाए। मुझे इसलिए इससे मिलना है, मुझे इसको भी अपना बना लेना है, इसलिए वो मिलता जुलता है, इसलिए वो किसी से मोहब्बत करता है, इसके लिए वो दोस्तियां करता है। उसने कहाँ दोस्ती करनी है कोई बताता नहीं है, उसका दिल बताता है उसको, उसको कहाँ मजा आता है किनके साथ बैठने में, वो ही है ना जाहिर है जहां पे उसके महबूब की बातें। तो ये ऐसे लोग होते हैं, फिर वो लगाते हैं अपना आप अल्लाह के रास्ते में, लगाते हैं अपनी जानें, खपाते हैं, खपते हैं, कोई उनको कह नहीं रहा होता, कोई उनको नोट नहीं डाउन, नोट डाउन अब तो तुमने इतना आवर लगा लिए, 5 से 6 आपका काम है, 6 से 8 आपका काम है, जी आपने 2 घंटे कर लिए, जी मेरा तो काम, मेरा तो टाइम ओवर हो गया, तो ये नहीं करते। तो आपको पता है जी, माँ टाइम देख के नहीं बच्चे को देखती, उसकी केयर करती, वो अल्लाह से मोहब्बत करने वाले हैं, उनको पता है मेरी जिंदगी अल्लाह के लिए, ये तो मैं सारी जिंदगी भी लगा दू ना, मैं अपनी जान भी लगा दू, हक तो ये है कि हक अदा ना हुआ, फिर भी हक अदा नहीं हो सकता, अल्लाह ये तूने ये जिंदगी दी है तेरी ही है, इसको लगा भी दिया तो क्या कारनामा कर दिया, ये आंखें लगा दी, ये दिमाग लगाया, ये वक्त लगाया, वक्त किसने दिया है, ये सांसें किसने दी हैं, अगर ये सांसें लग गई उसके लिए तो कौन सा कारनामा कर दिया। तो ये वो लोग हैं बहुत बड़े लोग हैं, बहुत बड़े लोग हैं, हमारी हमारी औकात से बहुत ऊंचे हैं। हम दुआ कर सकते हैं, अल्लाह हमें भी इनमें शामिल कर लेना, हम भी ऐसे बन जाएं। और फिर वो कैसे, वला यखाफून लौमत, उनको नहीं परवाह किसी की मलामत करने वाले की मलामत की। वो अल्लाह के रास्ते पे चल रहे हैं। अब लोग कह रहे हैं ना, तुमने तो अपने आप को इतना खपा लिया, तुम तो बस इसी तरफ लगी रहती हो, तुमने तो एक ही काम पकड़ के रख लिया, तुम तो फनेटिक हो गई हो, तुम तो एक्सट्रीमिस्ट हो गई हो, देखो अपने आप को क्या हाल बना लिया है, तुम्हारा हुलिया क्या हो गया है, हिजाब पहन के रखती हो, अम्मा लगती हो, मुलानी हो गई हो, फलाना हो गई हो, और तुम्हें ने क्या ये दाढ़ियां रख ली हैं, क्या लगते हैं ये कार्टून लगते हैं, ये वो हो गए, दे डोंट केयर, दे डोंट केयर। जिससे मोहब्बत होती है, आपने दीवानों को देखा, आपने मजनू को देखा, उसकी कहानियां सुनी, दे डोंट केयर। आप देखिए, जो लोग ना, ये रास्ता मुश्किल रास्ता है, आपको पता है ना, जो जन्नत है वो ढकी हुई है मसाइल से, मसाइब से, मुश्किलात से। ये मुश्किल रास्ता है जन्नत का, जो रास्ता है अल्लाह की तरफ जाने का, जो रास्ता है ना, इसके अंदर रुकावटें भी हैं, इसके अंदर लोगों के ताने भी हैं, लोगों की बातें भी हैं, तरह तरह की मुश्किलें हैं। ये उन लोगों का रास्ता नहीं हो सकता जो बड़े सेंसिटिव हैं, जिनको कोई कुछ कह दे ना तो अब वो रोते रहेंगे आके, हाय उसने मुझे ये कह दिया, मुझे तो बात भूलती नहीं है, उसने तो मुझे ऐसे कहा था, उसने तो ये कर दिया था, अब मैंने नहीं ये काम करना, देखो मुझे कितनी बातें सुननी पड़ती। ऐसे अगर आप इतने सेंसिटिव है ना, टच मी नॉट, तो फिर रहने दें, फिर नहीं इस रास्ते पे चल सकते, इस रास्ते पे टफ स्किन होना पड़ता है। कहते रहें कि मुझे नहीं कोई फर्क पड़ता, मेरे अल्लाह की नजर में तो मैं अच्छी हो जाऊं, बस मुझे इतना काफी, आई डोंट केयर ये मुझे एक्सेप्ट करते हैं या नहीं, इस हाल हुलिये में इस तरह की कामों के साथ ये मुझे एक्सेप्ट नहीं करते, आई डोंट केयर। ये है वला यखाफून लौमत लाइम। और अगर आपको ऑल द टाइम लोगों की बातों की केयर रहती है ना, तो फिर ये इनमें नहीं शामिल हो सकते। कितनी केयर करते हैं हम लोगों की, और कितनी दफा हम ये कह देते हैं मुझे नहीं परवाह, जो मर्जी बातें बनाते रहे, जो मर्जी दस्तूर जमाने का कहते रहे, मुझे नहीं पता, नहीं जी कल लोग देखें, फिर लोग कहेंगे ऐसे, लोग कहेंगे वैसे, नहीं फिर करना पड़ता है ना, नो मुझे नहीं परवाह। नहीं फिर तुम कैसे लोगोगी, क्या तुम इसी तरह जाओगी शादी पे भी, मैं यही करूंगी, आई डोंट केयर। ये जो आई डोंट केयर वाला रवैया है ना, वो यहां पे रखें। आज कुछ बच्चे जवान होते हैं जब नए नए, तो फिर वो हर चीज को कहते हैं आई डोंट केयर, लोग बातें बना रहे हैं आई डोंट केयर, माँ कहती है बेटा ये इस हुलिये के अंदर ना जाओ, ऐसे ना पहनो, ये कर लो, वो कहते हैं आई डोंट केयर। वो तो अपनी जवानी के जोश में कह रहे होते हैं। कौन लोग हैं जो अल्लाह के लिए कहें आई डोंट केयर, लोग कुछ भी कह रहे हैं, इतने भी कोई बहादुर हैं यार? कोई हमें तलवारें लेके नहीं हमारे सरों पे खड़ा हुआ, कोई हमें नेजे नहीं मार रहा, कोई हमें कहीं बंद नहीं किया हुआ। अल्लाह रहम करे, इस वक्त ही इसी जमीन के ऊपर कोई लोग हैं 1 मिलियन से ज्यादा लोग जो कंसंट्रेशन कैंप्स में बंद हैं, उनकी तो बयात एक समझ आती है। बाकी जो दुनिया है वो क्या मुंह दिखाएगी अल्लाह ताला को, यहां में बस लोग हमें बातें बनाते थे इसलिए हम डर गए, लोगों की बातों की वजह से, लोगों की मलामत की वजह से, लोगों के कार्टून कहने की वजह से, लोग मुझे अपनी दावत पे नहीं बुलाते, फिर वो लोग मुझे मेरे साथ दोस्ती नहीं करेंगे। कभी तो अल्लाह के लिए कह दिया करें आई डोंट केयर, मत करें, कभी तो कहें, या हर जगह ही हम गिर जाते हैं। वो तो नहीं डरते हमें कहते हुए ऐसे, वो तो नहीं डरते ये कहते हुए कि आप लोग ऐसे क्यों हैं, आप लोग, उनको तो नहीं डर लगता और उनको तो नहीं शर्म आती। लेकिन कैसा है वो ईमान कि हमें शर्म आती है और हम कहेंगे हाय हम कैसे कहें, नहीं बस जिधर वो चाहते हैं उधर ही फौरन झुक जाते हैं, जैसा वो चाहते हैं कि हम बोलें, उठें, बैठें, चलें, अपने रस्मों रिवाज करें, अपने जो जिस तरह वो चाहते हैं ना, उस तरह ही बस हम उसी तरह अपने आप को ट्विस्ट करते चले जाते। हर चीज में हम कह देते हैं कि नहीं हम क्या करें, फिर करना पड़ता है ना, क्योंकि हम लौमतुला इन जो है ना वो हमसे बर्दाश्त नहीं होती, मलामत करने वालों की मलामत नहीं बर्दाश्त होती। कभी वो खानदान वाले ही होते हैं, हमारी फैमिलीज में से ही होते हैं, कभी हमारे फ्रेंड्स में से होते हैं, बाहर से तो नहीं कोई लोग आते, हमारे अंदर के ही होते हैं जिनकी हम केयर कर रहे होते हैं इतनी। बस इनकी गुड बुक्स में आ जाए, अल्लाह ताला की गुड बुक्स में आए ना आए उसकी नहीं परवाह, तो वो क्यों फिर हमसे मोहब्बत करेगा? फिर पहली चीज ही खत्म हो गई, युहिब्बुहुम, वो क्यों मोहब्बत करेगा अगर हमें हर वक्त परवाह लोगों की है और अल्लाह की तो परवाह हम करते नहीं है, तो वो क्यों हमारी परवाह करेगा? तो इस आईने में हम खुद को देखें कि हम कहाँ हैं। ये अल्लाह के वफादारों का ग्रुप है, ये अल्लाह के महबूब लोगों का ग्रुप है जिनके अंदर ये सिफात है, वो अल्लाह से मोहब्बत करते हैं, वो ईमान वालों के लिए नरम है, मुतवाजे हैं, खुद को एक जिस्म की तरह समझते हैं उनके साथ, उनसे खंदा पेशानी से मिलते हैं, मुस्कुरा के मिलते हैं, उनको प्रेफर करते हैं हर एक पे, और इज्जत अल काफिरीन, काफिर उनमें शिद्दत देखते हैं कि इनको हम मोड़ नहीं सकते, ये अपने दीन के मामले में सख्त है, ये वैसे हमारे साथ अच्छी तरह बात करेगी, सब करेगी, लेकिन जहां पे दीन की बात आ जाएगी फिर देखो भाई इसको फिर उस मामले में नहीं आप कुछ कह सकते। वो लोग हैं जो अल्लाह के लिए खपते हैं, बाकी जिसको हम कह देते ना खपना, वो होता है जिहाद, खपा देना खुद को, माली तौर पे, जानी तौर पे, अपनी जिस जिस तरह से भी आप कर सकते, जरा सा हिस्सा डाल देना, जरा सा कुछ कर देना, उसको ही समझ लेना मैं बहुत बड़ा कारनामा कर दिया, ये नहीं है। अटमोस्ट स्ट्रगल को कहते हैं जिहाद, अटमोस्ट स्ट्रगल, और फिर उनको नहीं परवाह कोई कुछ भी बोलता रहे उनके लिए, अल्लाह हू अकबर। तो ऐसे लोग दुनिया में गुजरे हैं, और ये सिर्फ उन तक नहीं है, जो भी इस रास्ते पर चलना चाहे उसके लिए यही है। हजरत अबू जर गफ्फारी जो थे उन्होंने फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मुझे सात बातों का हुक्म दिया है, मिस्कीनों से मोहब्बत रखने का, उनके साथ उठने बैठने का, नहीं मिस्कीन तो फिर हमें कहते हैं हम गरीबों मिस्कीनों में हम क्यों बैठे उठे, हमारा भी स्टेटस कहीं कम ना हो जाए, उनको तो हम दूर बिठाते हैं, दुनिया के कामों में अपने से कम दर्जे के लोगों को देखने का और अपने से बड़े में को ना देखने का, दुनिया के मामले में अपने से कम को देखना, ये नहीं कि जिसके घर चले जाएं कहेंगे आ इसने मिलियन का घर ले लिया मुझे भी ऐसा ही चाहिए, वरना मुझे तो अपना घर बहुत बुरा लग रहा है, इसने ये ब्रांड नेम ले लिया मैं तो इससे बढ़ के कुछ लूं, नहीं इसने अपने से नीचे को देखे, सिला रहमी करते रहने को, चाहे दूसरे करे ना करे, और किसी से कुछ भी ना मांगने को, और हक बात करने को, चाहे वो सबको कड़वी लगे, और दीन के मामले में किसी मलामत करने वाले की मलामत से ना डरने को, और बकसरत ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़ने को, क्योंकि ये कलमा अर्श के नीचे का खजाना है। तो अबू जर गफ्फारी ने ये सात बातें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की नसीहतें बताई हैं कि जो उन्होंने आपको की थी, और इनमें एक थी वला यखाफून लौमतन, तभी इंसान दीन पे चल सकता है, अगर इनकी मलामतों की परवाह करते रहेंगे तो यकीन जाने कोई आपको एक कदम भी नहीं चलने देगा। ذَلِكَ فَضْلُ اللَّهِ يُؤْتِيهِ مَنْ يَشَاءُ, ये अल्लाह का फजल है वो जिसको देता है, जिसको चाहता है वो अता करता है, यानी इसके बाद भी उनका ये नहीं होता कि हम ही बहुत बड़ी कोई चीज बन गए, उसके बाद भी यही कि ये अल्लाह का फजल है, अल्लाह ताला जिसको चाहे अता फरमाए, जिसको चाहे वो ये अपना जाती कमाल कोई भी इंसान ना समझे इसमें, वल्लाहु वासिउन अलीम, और अल्लाह ताला वसी इल्म वाला है, उसको पता है कि किसके ऊपर ये फजल करना है, और उसके खजानों में भी कोई कमी नहीं है, वो वसी खजाने रखने वाला है, वुसत वाला है, यानी वो अता भी करता रहे तो कोई इंसान ये नहीं कर सकता उसको अता हो गया तो पता नहीं मुझे नहीं मिलेगा, नहीं वो सबको अता कर सकते हैं। इन्नमा वलीयुकुमुल्लाह व रसूलुहु वल्लदीना आमनु अल्लदीना यकीमून अस्सलाता व यूतून ज़कात व हुम राकिऊन। अब पहले बताया गया आपने उनसे दोस्ती नहीं करनी, अब किससे फिर दोस्ती करें? सवाल पैदा होता है ना, ईमान वाले दोस्ती रखें तो किससे रखें? तो इन्नमा कलमा हसर, यानी इसके सिवा तुम्हारा कोई दोस्त नहीं है, कि तुम्हारा दोस्त अल्लाह है और उसका रसूल है और ईमान वाले हैं। कौन से ईमान वाले? सब नहीं, अल्लादीन युकीमून सलाह, जो कायम करते हैं नमाज, वो तुम्हारे असल में दोस्त है, दिली दोस्त, यानी तुम्हें उनको बनाना चाहिए। अल्लाह तुम्हारा दोस्त है। तो पता है ना कि जिस वक्त उहुद में अबू सुफियान ने ये नारा लगाया था कि लनल उज्जा वला उज्जा लकुम, तुम्हारे लिए तो उज्जा है, हमारा बुत है, तुम्हारे लिए तो कोई उज्जा ही नहीं है, यानी तुम्हारा तो कोई मददगार ही नहीं। तो हजरत उमर ने क्या फरमाया था, अल्लाह मौलाना वला मौला लकुम, अल्लाह हमारा मौला है, वो हमारा वली है, तुम्हारा कोई मौला नहीं है। तो ईमान वालों के लिए मौला कौन है? अल्लाह है। उनके लिए सबसे बड़ी बात यह है कि हमारा अल्लाह है ना हमारे साथ, बस यही काफी और उसका रसूल, और ईमान वाले उनके दोस्त हैं। और वो ईमान वाले जो जुबानी कलामी ईमान के दावे नहीं करते, वो कायम करते नमाज। नमाज कायम करने में तीन चीजें खास तौर पे आती हैं। नंबर वन, नमाज के वक्त की हिफाजत करना, यानी टाइम के अंदर नमाज पढ़ना। ये नहीं कि टाइम बिल्कुल चला जाए तो तब उसके बाद आप कजा पढ़ें, कोई बात नहीं उठ के पढ़ लूंगी, आज नींद बहुत आ रही है, नहीं, नमाज की वक्त की हिफाजत। नंबर टू, दवाम, कि नमाज हमें हमेशगी हो, ऐसा ना हो कि आज 5 पढ़ लें तो अगले दिन 4 पढ़ें, तो अगले दिन 3 पढ़ लें, तो किसी दिन 2 पढ़ लें, तो जैसे भी दिल किया उस तरह से ही कर लिया। डिपेंड्स ऑन कि क्या मूड है और कितनी मसरूफियत है, उसके मुताबिक नमाज हो, नहीं वो कायम करते नमाज। और नंबर तीन, सुन्नत के मुताबिक नमाज, उस सुन्नत के मुताबिक पढ़ने का भी एहतमाम करना। ये कायम करने में सिर्फ पढ़नी नहीं है नमाजें, कायम करनी है। पढ़ तो बहुत सारे लोग लेते हैं, कायम नहीं कर पाते। तो कायम करने की ये शरायत है। वही उतून जक़ात, और वो देते हैं जक़ात, पिलर ऑफ इस्लाम में से है। वहम राकिऊन, और वो रुकू करने वाले, तो नमाज में तो रुकू हो गया, फिर अलग से रुकू की क्यों बात आई? रुकू का मतलब सिर्फ नमाज का रुकू नहीं है, रुकू का मतलब होता है झुक जाना। वो झुके हुए हैं, हम्बल हैं, आजी है, उनके अंदर तकबर नहीं है। तो यानी मोमिनों के वली वो होते। हम सोचते हैं कि हम इन अकड़े हुए लोगों के साथ दोस्तियां करेंगे ना, ये जो बड़े तकबर वाले हैं और बहुत बड़ी चीजें अपने आप को समझ वाले, तो फिर हम भी कोई बड़े हो जाएंगे। ऐसे नहीं है, मोमिनों के दोस्त वो होने चाहिए जो आजिज मिजाज हैं, जो झुकने वाले हैं। समझाइए, तकब्बुर किसकी, किन लोगों की अलामत है? जहन्नमियों की। क्योंकि जहन्नम में मुतकब्बिर जाएंगे, अकड़ने वाले जाएंगे, सरकश जाएंगे, और जन्नत में हराम है दाखला उसका जिसके दिल में राई के दाने के बराबर भी तकब्बुर है, वो जन्नत में नहीं जा सकता। तो इनके दोस्त वही है ना जो झुके हैं, अल्लाह के आगे भी झुकने वाले हैं, लोगों के साथ भी नरम है। वो बड़े नहीं बन के चलते जमीन में। वह मई है तवल्लल्लाह, और फिर बता दिया इसका फायदा, जो कोई दोस्ती करेगा अल्लाह के साथ, दोस्ती समझते हैं कैसी होती है दोस्ती, फिर दोस्त दोस्त के साथ टाइम भी गुजारता है फिर। और उसके रसूल से, वल्लदीना आमनू, और ईमान वालों के साथ। तो असल में यहाँ पे बात को एक समझें, जो बात यहाँ पे महजूफ है, जो मीनिंग है लेकिन वर्ड्स में नहीं है, वो है फाउलाए का हिजबुल्ला। तो ये हिजबुल्ला है क्योंकि आगे कहा गया फ इन हिजबुल्ला ही मुल गालिब, तो अल्लाह का जो लश्कर है ना वो गालिब आने वाला, ये है अल्लाह का लश्कर, उसका रसूल और ईमान वाले, ये अल्लाह का लश्कर है। तुम ये सोचते हो ना वो क्या पता उनको गलबा मिल जाए, जमाने की गर्दिश से हम घबराते हैं, क्या पता कि कल को मुसलमानों का पता नहीं क्या बनता है, ये पता नहीं किस मुश्किल में आ जाए, फिर हमारा क्या बनेगा। तो कोई नहीं, जो अल्लाह को और उसके रसूल और ईमान वालों को अपना दोस्त बनाए, वाकई दिली दोस्ती इनके साथ रखे, इनको अपना पुश्त बना, अपना सपोर्टर, अपना हिमायती इनको बनाए, तो फिर अल्लाह का लश्कर ही गालिब आने वाला है। इसका मतलब यही अल्लाह का लश्कर है। अल्लाह अकबर, क्योंकि एक हिजबुल्लाह है और एक हिजबु शैतान है। आगे इंशाल्लाह पढ़ेंगे जब आएगा, हिजबु शैतान कौन सा होता है। या अय्युहल्लज़ीना आमनू अब फिर दोबारा बताया गया, ला तत्तखिज़ू, ना तुम बनाओ, क्या ना बनाओ। अच्छा ये वाली बात जो है ना वो एंड में बताई गई, अगर आप ब्रैकेट यहां से कर लें, अल्लादीना से लेके ब्रैकेट शुरू करें और मिन कबली को वल कुफार, कुफार के ऊपर ब्रैकेट बंद कर दें, तो अब आप ये उसके बाद जो औलिया लिखा हुआ ना, आप इसको ये समझें कि या अल्लादीना मनो ला तत्तखिज़ू औलिया, ना तुम बनाओ दिली दोस्त किन को, अल्लदीन तखजू दीना को हुजू, अब ये ब्रैकेट वाली बात, उन लोगों को जिन्होंने तुम्हारे दीन को मजाक और खेल बनाया, मीन अल्लदीन ऊतुल किताब मीन कबलिकुम, उन लोगों में से ये कौन लोग हैं जिन्होंने खेल तमाशा बनाया है, ये वो लोग जो अहले किताब में से है वल कुफार और काफरों में से, जिन्होंने तुम्हारे दीन को खेल तमाशा बनाया। क्या मतलब खेलो, नॉन सीरियस चीज, उसका मजाक उड़ाते हैं, हंसी उड़ाते हैं, उसको कुछ नहीं समझते, हकीर समझते हैं। जैसे आप देखते हैं ना कि किसी चीज को हकीर समझ के उसका इस्तेजा करना, उसको हुजूफ होता ही वो वाला मजाक है। अब दीन को कैसे मजाक बनाते हैं, यानी चाहे दीन के शायर, हमने पढ़ा था ना शायर है दीन कौन कौन से होते हैं, तो जिनकी भी निस्बत दीन की तरफ है, अल्लाह की तरफ है, उन चीजों का मजाक उड़ाना, जन्नत का मजाक उड़ा रहे हैं, उसके लतीफे बना रहे हैं, जहन्नुम के बना रहे हैं, अल्लाह ताला की जात पे अल्लाह माफ करे, कई लोग ऐसे ऐसे मुहावरे और ऐसी बातें बनाते हैं नमाजों के ऊपर, ये तो मुसल्ली है, मुल्ला की दौड़ मस्जिद तक, मुल्ला की दाढ़ी में चूहा, फलां ये वो, इतनी बातें और जोक्स, तो किसी को क्या कहना है, हमारे तो अपने लोग, असल में आज इनके ये इसीलिए मना किया गया ना कि इनके साथ दिली दोस्तियां ना रखो, उनके साथ रह रह के या उनके ख्यालात से इतने मुतासिर हैं कि वैसी ही बातें करने लगे, क्योंकि रोब जिसका होगा दिल के अंदर, जिसकी मोहब्बत और जिससे मुतासिर हैं, उसी के व्यूज फिर अपने अंदर भी आने लगेंगे। हिंदू कहते थे ये मुसल्ली है और उसको घटिया चीज समझते, तो मुसल्ली का मतलब होता है नमाजी, हूरों के ऊपर लतीफे, दाढ़ी के ऊपर बातें, उस हिजाब के ऊपर बातें, फिर आप देखें कुरान के ऊपर, नबी के ऊपर कितनी बातें बनाई जाती हैं। तो इस्लामी शायर का जो लोग मजाक उड़ाते हैं उनको तुम कैसे दोस्त बना सकते हो, उनको मत दोस्त बनाओ, जिन्होंने इन्होंने तो अपने दीन को, खुद अपने दीन को खेल तमाशा बनाया हुआ है, तुम्हें कैसे इस तरफ आने देंगे। आप देखते हैं ना ये लोग तो अपने दीन को भी नहीं कुछ समझते, अपने ही प्रॉफिट का मजाक उड़ाते हैं। और अगर आप कभी इनके साथ बात करके देखें, इनको अल्लाह ताला की, जैसे हम मेरे अंदर एक अल्लाह ताला की अजमत का एहसास और कुछ लिमिट्स हैं हमारी, इनको कुछ नहीं, ये तो गॉड का ऐसे ही बात करते हैं जैसे कोई बात ही नहीं, जैसे किसी इंसान की बात कर रहे हैं। तो इन्होंने अपने दीन को कुछ नहीं समझा, इन्होंने अपनी किताबों का क्या हशर किया, इनके साथ दोस्ती लगा के क्या होगा, और काफिर का तो वैसे ही कोई दीन ईमान नहीं। जब इनके साथ दोस्ती लगाओगे तो तुम्हारे अपने दिल के अंदर भी अपने दीन की कोई वैल्यू नहीं रह जाएगी, फिर हमारे लोग भी इसी तरह मजाक करने लगते, इसी तरह बातें बनाने लगते। और ये देखिए ना, ये ओवर द टाइम होता है, ये एक दिन में नहीं हो जाता, ये ग्रेजुअली, जब चीजों का मजाक, मिसाल के तौर पे एक मैं आपको मिसाल देती हूँ, शादी की मिसाल है, निकाह जो है उसको आज इतना अजीब और इतना कि हमने नहीं शादी करनी और गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड रखे हैं वो सही है, ये कैसे हुआ, ये एक दिन की बात नहीं है। ये आप देख लें, वो जो भी कार्टून बनते हैं, जो भी लतीफे बनते हैं, उसमें बेगम ने ये कह दिया, उसने एक बेलना उठाया हुआ और वो मोटी सी खड़ी भी है और उसकी कमर ऐसी और ये कमर से कमरा हो गई और ये हो गई, और उसके ऊपर इतने लतीफे हैं कि पिछले दिनों किसी ने मुझे भेज दिया कि जी देखो, वो औरत ने पूछा कि भाई खुशकिस्मत कौन होता है, खुशकिस्मत को अंग्रेजी में क्या कहते हैं, तो उसने कहा अनमेरिड। कहने क्या बताने की बात है ये, कि यानी मुसीबत, शादी एक मुसीबत, ये लड्डू जो खाए वो पछताए, जो ना खाए वो भी पछताए, मतलब इतना ज्यादा उसको डिग्रेड किया गया कि आज का बच्चा खड़ा होकर कहता मैंने नहीं शादी करनी, ये तो एक मुसीबत है। फिर आप देखें जहां पे दिखाएंगे वहां पे क्या दिखाएंगे, एक दाढ़ी वाला, एक बुरके वाली, और साथ एक बच्चों की फौज है, और उनको दिखाएगा कि कितना हकीर और कितना उसके ऊपर मजाक उड़ाते हैं और हंसते हैं। उसके बाद से क्या होने लगा, हमारे मुसलमान कहने लगे नहीं, ज्यादा बच्चे नहीं, वो इसे शर्माने लगे। हाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने क्या फरमाया, मैं अपनी उम्मत के ऊपर फखर करूंगा उससे, इसकी कसरत के ऊपर आज मुसलमान शर्माते हैं, 2 से 3 हो जाएं तो कहते हैं आए लोग क्या कहेंगे, बच्चों की फौज है। क्योंकि वो एक दिमाग के अंदर एक चीज डाल देते हैं, जब ऐसी बातें कर करके ना, और उस उन चीजों को डिग्रेड कर करके, कि आपको अब लगने लगता है कि ये चीजें घटिया हैं। अब जब दिखाएंगे एक बंदे, एक लड़के को जो कि बिल्कुल पागल सा दीवाना सा है, लेकिन उसने हमेशा अपनी पैंट ऊंची की होती है और वो दीवानी सी बातें कर रहा है, तो अब दिमाग में क्या आ गया कि जो भी ऐसा है ना वो इस तरह का पागल सा होता है, तो नर्ड होता है वो। अब आप देख लें कि क्या कॉन्सेप्ट बनाते हैं। इसी तरह दिमागों को इन चीजों के लिए तैयार किया जाता है कि कुछ चीजें हमारे लिए मजाक बन जाती हैं। और बच्चे दो ही अच्छे, अब ये बहुत अच्छा स्लोगन हो गया, ये कैसे हो गया? तो ये माइंड गेम्स हैं। जो लोग दीन के शायर का मजाक उड़ाते हैं ऐसे ही नहीं है, ये चीजें भी आहिस्ता आहिस्ता कर करके दिमागों के अंदर डाली जाती हैं, और एक दिन इंसान के लिए वो उनके ऊपर बात करना, उनका मजाक उड़ाना कोई बात ही नहीं रह जाता। आज क्यों हुआ ये ऐसे? अगर आप देखें, अगर आप सोचें इस बात को, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर आज आ जाएं और या उनके सहाबा आ जाएं, तो क्या क्लीन शेव होंगे वो, या दाढ़ियों वाले होंगे? ये दाढ़ियों का मजाक देखें कितना, उनकी क्या कपड़ा टखनों से ऊपर होगा कि नीचे होगा? लेकिन आज इनका मजाक उड़ाना जायज कैसे हो गया? क्योंकि ये चीजें आम करती हैं। लेकिन हम भी ऐसे लोग हैं कि हम भी पीछे चल पड़ते हैं और इस चीज को माइंड ही नहीं करते, और उन चीजों पे हंसते हैं। हालांकि ये शायर हैं हमारे दीन के, कैसे हो सकता है कोई किसी की माँ का मजाक उड़ाए तो वो बैठा रहे और वो भी हंसना शुरू हो जाए, हाँ हाँ ठीक है मेरी माँ का तू मजाक उड़ा रहा है, बड़ा अच्छा कर रहा है, मुझे भी बड़ी हंसी आ रही है, ऐसे कोई करेगा? उसके अंदर गैरत होती है ना कि नहीं तूने कैसे मेरी माँ का मजाक उड़ाया। इस तरह हमारे अंदर दीन की गैरत होनी चाहिए, लेकिन दीन की गैरत नहीं रही है। मुसलमान के अंदर ही दीन की गैरत नहीं है, उसके किसी को भी ये खुद ही वो मजाक उड़ाने वाले बन जाते हैं, किसी को भी कुछ कह दोगे कुछ फर्क नहीं पड़ता, बल्कि खुद आगे बढ़ के इस चीज को पेश करते हैं। अल्लाह अकबर। तो फिर ऐसे मुसलमान भी अगर वो इस तरह का किरदार रखते हो तो उनको भी दिली दोस्त ना बनाए, क्योंकि मुसलमान के अंदर अपनी ईमानी गैरत सबसे बड़ी चीज होती है। इससे मुझे एक दफा याद आया कि किसी ने कहा आप ये बातें बताती हैं, कोई आपसे दुश्मनी ना कर ले तो आप ये बातें ना बताया करें इस तरह की। वो बात है कि अगर ये बात ही नहीं बतानी, जो हक बात है अगर वो ही नहीं कहनी, और मलामत करने वाले की मलामत से डरना, या ये डरना कि भाई वो कुछ कह ना दें, या वो हमारे खिलाफ ना हो जाएं, या वो हम पे कोई जादू वगैरह ना कर दें, और इससे ही डरते रहना, तो भी तो इन कामों में आना ही नहीं चाहिए। तो जो दीन की गैरत है ना वो अपने अंदर रखें, दीन की गैरत होनी चाहिए। जैसे आपको अपने ऊपर गैरत आती ना, कोई मुझे बुरा कह दे मुझे बहुत बुरा लगता है, मेरे बच्चों को बुरा कह दे मुझे बहुत बुरा लगेगा, मेरे घर को बुरा कह दे, मेरे खानदान को बुरा कह दे तो मैं सीख पा हो जाऊंगी, लड़ने को खड़ी हो जाऊंगी, लेकिन मेरे दीन को बुरा कह दे तो कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, ये तो चलता ही है। मेरे नबी वाले हुलिये को बुरा कह दे तो मुझे नहीं फर्क पड़ता, ये कैसे हो सकता? या तो हमारी वफादारियां हमारे दीन के साथ उस तरह से नहीं है जैसे हमारी और चीजों के साथ है, वरना कैसे हो सकता है कि हम ऐसे रवैये रखें कि जो हमारे दीन को तमाशा बना के रख ले, जो हमारे दीन को कुछ समझते ही नहीं है, उनके साथ हम कहेंगे ये हमारे बड़े बेस्ट फ्रेंड हैं। कैसे तुम्हारे दिन उनके साथ मिल सकते हैं, कैसे तुम्हारी मोहब्बत उनके साथ हो सकती है? वत्तकुल्लाह इन कुंतुम मुमिनीन, अल्लाह को खौफ करो अगर तुम्हारे अंदर ईमान है। ये वत्तकुल्लाह ऐसे है कि जैसे कोई कोई डर है तुम्हारे अंदर, कोई खुदा खौफी है, अगर तुम्हें अंदर जरा भी ईमान है तो तुमको खुदा खौफी करो और ऐसे लोगों से दोस्ती ना करो। वाइदा नादैतुम इला सलाती, और जब पुकारते हो तुम नमाज की तरफ, इत्तखज़ूहा हुज़ूअ लाइबा, वो तो उसको मजाक बना लेते हैं, वो इसके ऊपर हंसी उड़ाते हैं। एक आदमी था जो मदीना में था, और वो जब अजान होती थी
तो वो मजाक उड़ाया करता था और बुरा भला कहता था। बल्कि जब वो अशहदुन्ना मोहम्मद रसूलुल्लाह सुनता तो कहता था कि झूठा जल जाए। तो एक दफा रात को उसकी नौकरानी घर में आग लाई और पतंगा उड़ के आया जिसे सारे घर में आग लग गई और उस आदमी का सारा घर बार जल के खत्म हो गया। तो ये बाज लोग अजान का मजाक करते हैं, हालांकि अजान तो वो है जिससे कौन बोझ रखता है, अजान कौन नहीं सुनना चाहता, शैतान। शैतान आपको पता है अजान जहां पे हो रही है वो इतनी दूर भाग जाता है, हदीस में आता है कि जहां पे उसको अजान की आवाज ना आए, फिर जब अजान खत्म होती तब वापस आता है, इतना उसको अजान से एलर्जी है। लेकिन अगर मुसलमान को भी एलर्जी होने लगे अजान से तो फिर हम क्या कहेंगे भाई, वहां पे घर ना लो। इनका तो मुल्लाओं का एक ही काम है, लाउड स्पीकर पे शुरू हो जाते हैं अजानों पे अजाने देने। इतना लोग चिढ़ते हैं इस बात से, हालांकि अजान से ज्यादा खूबसूरत क्या आवाज हो सकती है कि जब गूंजती है एक आवाज पूरी फिजा के अंदर, हय्या अलस सलार, हय्या अलल फरार, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। शायद ये वो लोग समझ सकते हैं जो ऐसे मुल्कों में रहते हैं जहां पे अजान की आवाज नहीं आती, तब पता चलता है ये कान तरसते हैं ऐसी आवाज सुनने को। सबसे ज्यादा मैं जब बैक होम जाती हूँ पाकिस्तान, तो सबसे ज्यादा मुझे जो चीज अच्छी लगती है, और मैं वहां पे लोगों को कहती भी हूँ तुम खुशकिस्मत हो कि तुम्हारे कानों में अजान की आवाज आती है, इतना अच्छा लगता है अजान सुनाई देती है, हर तरफ अल्लाह की बड़ाई की सदाएं गूंजने लगे, हर तरफ मेरे नबी की नबुवत की गवाही गूंजने लगे। किसको बुरा लगेगा ये, उन्हीं को लग सकता है जिनको इस दीन को जो कुछ समझते ही नहीं। तो ईसा नादे तुम इला सलाती, जब तुम पुकारते हो नमाज की तरफ यानी अजान देते हो, इससे पता चला कि कुराने पाक में अजान की दलील मौजूद है। नादे तुम इला सलात क्या है, अजान। अगर कोई आपको पूछेगा क्या कुरान में कोई दलील है कि अजान देनी चाहिए या अजान होती है कोई चीज, ये कहां से आपने बना ली, अब अजान देंगे कैसे, ये कहां से लाओगे, जो हदीस को ही नहीं मानते वो किधर से लाएंगे ये कि अजान के अल्फाज क्या होने चाहिए, उसके लिए तो हदीस की तरफ आना ही पड़ेगा। फिर क्या देते हैं, हम उतनी हदीस मानते हैं और नहीं मानते, वो सिर्फ जो अपने अपने जहां पे पता है कि अब इसके बगैर दाल नहीं गलती वो फिर मान लेते हैं। तो अजान तो वो प्यारी कलमात हैं कि जिनके बाद जब आप दरूद पढ़ते हैं और जब इसका जवाब देते हैं, अल्लाहुम्मा रब्ब हाजी दावते तामा वाली जो दुआ है, जब वो करते हैं आप दुआ, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शिफात वाजिब हो जाती है आपके ऊपर, वाजिब आपके लिए वाजिब हो गई। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम उस दिन कयामत के दिन आपके लिए शिफात करेंगे। तो खुशकिस्मत ही है ना जो लोग अजान सुनते हैं और फिर उसका जवाब देते हैं। पहले तो साथ साथ अजान के जो अल्फाज हैं उनको उनके बाद जब मुअज्जिन कहे तो साथ साथ दोहराएं, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्ला पढ़े, और उसके बाद आखिर के अंदर फिर दुरूद शरीफ और दुआ पढ़नी है। कयामत के दिन अजान देने वालों की गर्दनें सबसे ऊंची होंगी, यानी लंबी गर्दनों रखेंगे, यानी बड़ा ऑनर होगा उनको, लोग देख के कहेंगे ये है मुअज्जिन। और आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया अल्लाह इस उम्मत के मुअज्जिनीन की मगफिरत फरमा, ये दुआ की थी। तो ये बड़ा फजीलत वाला अमल है अजान देना, लेकिन वो इसका भी मजाक करते हैं। ज़ालिका भी अन्नहुम कौमुन ला याकिलून, ये इसलिए कि ये कौम इसको समझ ही नहीं, अकल ही नहीं है इनके अंदर। अब जितना मर्जी पढ़े लिखे हो, अल्लाह ताला ने बता दिया कि जो दीन के शायर का मजाक उड़ाता है ये बेअकली की निशानी है और कुछ नहीं। इनके अंदर अकल होती तो ये करते। ठीक है, तो आप ले लें कोई भी डिग्रियां जितनी मर्जी ले लें, लेकिन अगर वो कहते ना भाई उनके पास तो पीएचडी है, वो तो इतना बड़ा डॉक्टर है, भला उसको नहीं समझ है। हाँ उसको नहीं है समझ, अगर वो ये काम करता है तो। अजान भी दीन के शायर में से है। देखिए अजान देख के आपको क्या, अजान सुन के क्या याद आता है, अल्लाह याद आता है, दीन याद आता है, नमाज याद आ जाती है। तो दीन के शायर में जिस चीज को भी देख के आपको अल्लाह याद आ जाता है, कोई शायर शायर अल्लाह में से है। शायरुल्लाह का मजाक उड़ाना ये इसका मतलब इसके अंदर अकल नहीं है बंदे के अंदर। कुल या अहल किताब, कह दीजिए ए अहले किताब, हल तनकीमूना मिन्ना इल्ला अन आमन्ना बिल। तुम हमारे हमारे से इसीलिए बुग्ज रखते हो, वैर रखते हो, नाराज होते हो हमसे। तुम्हारे जो भी दावतें हैं वो क्या इसलिए सिर्फ कि हम अल्लाह पर ईमान रखते हैं? यानी और हमारा क्या कसूर है? तुम हमसे क्यों नाराज हो? तुम हमसे क्यों ये दुश्मनी करते हो? सिर्फ इसलिए, और वरना क्या बात है बताएं? वमा उन्जिला इलैना वमा उन्जिला मिन कब्ल, और हम उस पे ईमान लाते हैं जो हम पे नाजिल हुआ और जो हमसे पहले नाजिल हुआ, यानी तौरात इंजील सब पे हम ईमान लाते हैं। तुम्हें तो ये करना चाहिए कि तुम हमारे हमें हमारे साथ बोझ छोड़ के अप्रिशिएट करो इस बात को। और उल्टा क्या है कि उनको मुसलमानों के साथ दुश्मनी है। वअन्ना अक्सरकुम फासिकून, असल में बात यह है कि बेशक तुम में से अक्सर फासिक हैं। फासिक मैंने आपको क्या बताया था? जो हदों को तोड़ दे, सरकश हो जाए, अल्लाह के दीन के अहकामात को पसे पुश डाल दे और खुल्लम खुल्ला उसको कोई परवाह ना हो, वो फासिक कहलाता है। जैसा एक एग्जांपल जैसे इसकी है, जैसे मेरा जिस्म मेरी मर्जी, ये फिस्क है। यानी क्या मतलब कि धड़ल्ले से कहना, धड़ल्ले से अल्लाह की हदों को तोड़ना, और फिर कहना कि भाई मुझे इसके अंदर कोई शर्म नहीं है, मैं तो ये बात डंके की चोट पे कहती हूँ। यानी एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी, बेशर्मी और ऊपर से इंसान की डिटाई, ये होता है फिस्क। तो ये अक्सर इनमें से फासिक है, दे डोंट केयर। आप देख लेना, उनको ये भी केयर नहीं है कि हमारी ये अपनी किताब है, हम उसके अहकामात को मान लें, वो उसको भी नहीं मानते, क्योंकि इन्होंने अपने दीन को भी खेल तमाशा बनाया हुआ ना। इनके लिए दीन कोई सीरियस चीज है ही नहीं है। आप देख लें इस वक्त दुनिया में ये कितनी ट्रू बात है, कितने लोग हैं इनमें से भी आज इनके चर्च वीरान हो रहे हैं। किस वजह से, क्यों बिक रहे हैं ये? उनको ये अपने दीन को भी नहीं कुछ समझते, वो हमें क्या मानेंगे या समझेंगे? वो तो अपने भी ना रहे, लेकिन उनका हाल ये है ना कि वो उनका समझ लें ये कहना है कि हम तो डूबे हैं सनम, तुझे भी ले डूबेंगे। वो खुद तो गए काम से और दूसरों को भी वो साथ ही ले जाना चाहते हैं। इसीलिए तो कहते हैं ना भाई, अब दीन में इनकी बात ना करो, ये तो डिवाइड करता है। बस हम सब एक हैं ऐसे ही। कुल हल उनब्बीकुम बिशर्रिन मिन ज़ालिका मसूबतन इंदल्लाह, अल्लाह अकबर, कह दीजिए क्या मैं तुम्हें बताऊं इससे भी ज्यादा शर की चीज, इससे भी ज्यादा बुरी चीज। आप पहले बात आई ना कि पूछे इनसे कि क्यों ये हमारे खिलाफ हैं, क्यों हमसे दुश्मनी करते हैं, क्यों हम पे गुस्सा निकालते हैं, जबकि कोई दुश्मनी का सवाल ही नहीं है। अब क्या कहा जा रहा है कि तुम्हें क्या हुआ है, तुम क्या चीज हो? तुम्हारे अपने आबाओ इजदाद की तारीख है वो तो सुन लो, तुम हम पे क्या गुस्सा करते हो या हम पे से क्या दुश्मनी करते हो? तुम ये तो देखो कि जो तुम्हारे आबाओ इजदाद थे वो क्या थे। मैं उनसे भी, इससे भी ज्यादा बुरी चीज तुम्हें बताऊं, मिन दालिका, जिसके साथ दुश्मनी करनी चाहिए या जिसके ऊपर गुस्सा करना चाहिए, मसूबतन इंद अल्लाह, अल्लाह के हाँ जो बदले के लिहाज से जो सबसे बुरी चीज है वो ये है कि मल्लानाहुल्लाह, जिसपे अल्लाह ने लानत कर दी। और आपको पता है कि इनके ऊपर लानत हुई भी है, आगे इसकी एक वजह आ रही, वो एक वजह है सिर्फ, बहुत सारी वजूहात हमने सूरह बकरा में पढ़ भी ली है, लेकिन जिनके ऊपर लानत की गई ना, आज हम कहते हैं इनको मान लो, इनको तस्लीम कर लो, क्योंकि हम भागे जा रहे हैं आज उनको मानने के लिए, इन जिनके बारे में खास तौर पे ये कहा गया और आगे आएगा कि ये तुम्हारे कभी नहीं हो सकते। वह गदीब अल्लाह अलैहि, और जिन जिस पे गजब हुआ अल्लाह का, वह जाला मिनहुमुल क़िरदत वल खनाजीर, और जिनको बंदर और खंजीर बना दिया गया। बंदर वाली तो हम स्टोरी पढ़ चुके हैं, लेकिन इन्हीं के अंदर ये भी एक अल्लाह ताला का अजाब आया था कि इनमें से किसी को भी एक उसको खंजीर भी बनाया गया था। वह आबद ताहूत, और जिन्होंने बंदगी की ताहूत की, जिसने बंदगी की ताहूत की, ये वो सबसे बुरा वो है अल्लाह के नजदीक। ताहूत की बंदगी क्या है? मतलब ताहूत हर उस कुव्वत को कहते हैं, हर वो पावर जो अल्लाह की पावर को चैलेंज करती है खुल्लम खुल्ला। जो कहे कि अल्लाह की नहीं माननी मेरी मानो, धड़ल्ले से कहे, खुद भी वो अल्लाह की बंदगी जाहिर है नहीं करते तो जो इस तरह कहते हैं, और दूसरों को भी कहते हैं कि तुम्हें भी नहीं मानना, तुम मेरी इबादत करो मेरी मानो, तो वो ताहूत के बंदे बने। ताहूत इंसान का नफ्स भी हो सकता है, ताहूत शैतानी कुव्वतें भी हो सकती हैं, ताहूत कोई भी हो सकता है, जो भी ऐसा करे, ताहूत किसी का माशरा भी हो सकता है। तो ये हैं जो सबसे ज्यादा बदले के लिहाज से सबसे ज्यादा बुरे हैं अल्लाह के नजदीक, जिनके ऊपर अल्लाह ने लानत ही कर दी, यानी ये इनकी तारीख है, ये इनकी हिस्ट्री बताई जा रही है, अल्लाह का गुस्सा इनके ऊपर हुआ और दुश्मनी तुम्हारे साथ रखते हैं। तो सबसे ज्यादा गुमराह लोग ये हैं, उलाए का शर मकान व अदल अनसवाए सभी, सबसे ज्यादा बदतरीन है मर्तबे में और सबसे ज्यादा भटके हुए रास्ते के एतबार से। तो मैं तुम्हें बताऊं कि कौन है जिनके ऊपर अल्लाह का गुस्सा हुआ, तो इनकी तारीख बताई जा रही है कि बदतरीन लोग ये थे। और तुम अपनी खराबियों को देखो, तुम हमारे दीन का मजाक उड़ाते हो, ये था तुम्हारे आबाओ अजदाद का किरदार और ये था उनका ठिकाना। वाइदा जया उकुम कालू आमन्ना, और ये बात पहले भी हम पढ़ चुके हैं सूरह आले इमरान में इसी तरह की आयत, कि वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिसों में आते थे और कहते थे कि अपनी प्लानिंग ये होती थी कि सुबह को जाएंगे और जाके हम ईमान का दावा करेंगे और शाम को निकलेंगे और कहेंगे वो इस दीन में कुछ नहीं है, कुछ नहीं है उसका, कुछ नहीं वो, ताकि लोगों को जो कमजोर मुसलमान हैं, कमजोर ईमान वाले हैं, नए नए या मुसलमान हुए में इतना अभी वो स्टेबल नहीं हुए अपने ईमान में, तो उनको भी मुतजलजल कर दिया जाए, वो भी इस दीन में ठहर ना सके, ये इनकी चाल थी। तो वही वाली बात यहाँ पे है, वह इदा जय उकुम, जब वो आते हैं तुम्हारे पास, कालू आमन्ना, कहते हैं हम तो ईमान लेकर आए, वह कद दखलू बिल कुफरी वह कद खरजू भी, हालांकि वो दाखिल भी कुफर के साथ होते हैं और निकलते भी कुफर के साथ ही, यानी उस वक्त भी ईमान उनके अंदर एक लम्हे के लिए भी नहीं आया होता, सिर्फ वो ऊपर की बातें ना सब लोगों को दिखा। आपने देखा नहीं, लोगों को बड़ा इफेक्ट होता है इस बात का, भाई लोग ये नहीं देखते कि कहाँ पे बात सही कही जा रही, वो देखते हैं अगर बहुत बहुत सारे को तो छोड़े, मतलब सड़क पे कोई जा रहे हैं, हाँ तीन लोग अगर कहीं खड़े हो जाते ना, तो चौथा जो गुजरने वाला ना, वो कहता मैं भी खड़ा होकर देखूं कोई चीज है, पता नहीं क्या है। आप देखते हैं कहीं गाड़ियां रुक के जा रही हैं, आप भी रुक के देखते हैं क्या देख रही थी ये गाड़ियां, होता है ना ऐसे। अच्छा फिर कहीं से कोई उठ के जाने शुरू हो जाए, दो लोग गए तो तीसरा भी कहता है मेरे ख्याल मुझे भी जाना चाहिए, अगर सब लोग जा रहे हैं तो मुझे भी जाना चाहिए। तो लोगों को इस तरह, आम जो आवाम होती है ना, जो अपने दिमाग से नहीं सोचती, बस भेड़ चाल है, बस दूसरों के पीछे लगने वाले, वो उनके ऊपर साइकोलॉजिकली ऐसा इफेक्ट होता है इस चीज का, देखो ये तो इतने इल्म वाले, भला ऐसे क्या हो गया, उनको नहीं बात समझ आई। अब कुछ लोग सोचते हैं वो देखें ये यहूदी हैं या ये इतने बड़े पढ़े लिखे हिंदू हैं, इतने बड़े साइंटिस्ट हैं, उनको नहीं भला समझ आती, भाई उनको नहीं समझ आ रही, वाकई नहीं समझ आती, अगर उनकी अकलें खत्म हो चुकी हैं तो इसके अंदर ये नहीं कि हक वाजे नहीं, हक तो वाजे है, ये लोग ऐसे लोगों को देखते हैं और फिर परेशान होते रहते हैं, और फिर अपने आप को डाउट करने लगते हैं कि भला अगर ऐसी बात होती तो इनको समझ आ ही जानी थी ना। तो देखें ये था उनका प्लान, ताकि मुसलमानों को उनके दीन से हटाएं, इन्होंने कोई एक कोशिश नहीं की है और आज भी साजिशें करते रहते हैं। वल्लाहु आलमु बिमा कानू यक्तुमून, और अल्लाह को पता है जो इन्होंने दिलों के अंदर छुपाया हुआ, यानी उनका तो प्लान ये है, अल्लाह को पता है कि इनकी ये प्लानिंग है, इन्होंने ईमान नहीं लाना, ये बस आए और उठ के वैसे ही चले गए, ना ईमान उस वक्त लाए ना बाद में इनके अंदर ईमान था। और आप देखें कितनी बदनसीबी है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में आके भी उनको ईमान ना नसीब हुआ, दिल में कोई बात ना घर की। इसी तरह बाज लोग दीन की मजलिसों में जाते हैं, इतने लेक्चर जबरदस्त होते हैं, उसके अंदर बैठते हैं सुनते हैं और उसके बाद उठते हैं तो क्या है, कुछ भी, जैसे आए थे वैसे ही चले गए, जरा भी दिल के अंदर कोई गुदास नहीं पैदा हुआ, जरा दिल नरम नहीं हुआ, कोई अंदर हलचल ही नहीं हुई। आज भी ऐसे लोग हैं,
और उठते हैं तो उसके बाद कहते हैं ये तो मौलवियों का काम ही है, ये तो बस इन्होंने ऐसे ही बनाई हुई बातें हैं, और छोड़ो इनकी बातों को, इनके पीछे गए तो बस ये चलो फन करो कुछ नहीं है। फिर उनका फिर वही रवैया होता है, वतअदराक कसीरम मिनहुम युसारिउना फिल इस्मि वल उदवान, तुम देखोगे इनमें से अक्सर को किसमें दौड़ धूप कर रहे होते, इस्म और उदवान यानी गुनाह में और ज्यादती के कामों में। इस्म वो होते हैं गुनाह जो अल्लाह के हक में कमी की जाए, और उदवान वो गुनाह है जो इंसानों के साथ कोई ज्यादती के काम है, जो इंसानों के हक हकूक कसब करना, ये उदवान है। ठीक है, दूसरों को नुकसान पहुंचाने की कोशिश करना। तो इनका हाल क्या है, भाग दौड़ किसमें करनी चाहिए, नेकी में, और इनकी हालत क्या है, ये भाग दौड़ किसमें करते हैं, बुराई में। याद रखें भाग दौड़ कब होती है, जब चाहे नेकी हो चाहे बुराई हो, लेकिन जब इंसान उसको इख्तियार किए रखता है करता जाता है करता जाता है, तो वो फिर उसकी आदत बन जाती है, फिर वो उसको मुश्किल नहीं लगती, फिर बस इरादा ना भी करे उसी तरफ चल पड़ता है इंसान। नेकी को भी अगर आप कसरत से करते रहेंगे, एक दिन वो आपकी ऐसी रूटीन में आ जाएगी कि आपको मुश्किल नहीं होगी वो करनी। इसी तरह बुराई भी है, हम बुराई को सोचते हैं ना कोई बात नहीं एक दफा कर लेते हैं, कोई बात नहीं कोई बात नहीं बाद में तौबा कर लूंगी, नहीं वो आपकी हैबिट बन जाती है, फिर उसके बाद वो छूटती नहीं है और उसको छोड़ना बहुत मुश्किल हो जाता है। ये भी यूसार होना फिर इसमें कैसे है, कैसे हो सकता है कि कोई भागे गुनाहों के अंदर, इसलिए कि अब वो गुनाह उनके लिए कोई गुनाह ही नहीं रहेगा, वो उनकी आदत है वो ऐसे ही करते हैं। तो ये ना सिर्फ अल्लाह के हकूक में, इंसानों के बारे में भी, उनके हकूक में भी ज्यादतियां करने वाले थे, उसमें भी भाग दौड़ करते थे। और आज भी देख लें जो भी गुनाह के काम है, बिदते हैं, शिर्क की चीजें हैं, गुनाह की चीजें, इसके अंदर कितनी भाग दौड़ है। आप एक कॉन्सर्ट रख लें कहीं, आप कहीं मेहंदियां कर लें, आपको बुलाने की भी नहीं जरूरत होगी, आप ये मेले ठेले उर्स वगैरह पे देखें, धमाले देखें लोग कैसे डालते हैं, फिर आप देखें कहीं कूड़े वगैरह हो रहे हैं, कहीं इस तरह की चीजों में लोगों को कितना इंटरेस्ट होता है, भाग भाग के जाएंगे उसके अंदर, भाग भाग के लगे हुए उस काम के अंदर, क्योंकि इनमें रंगीनियां बहुत हैं। गुनाह के अंदर ना एक अट्रैक्शन होती है ना, मैंने आपको ये जो हदीस बताई है अभी, इसी के अंदर जहन्नुम के बारे में क्या था कि जहन्नुम को किससे ढक दिया गया, ख्वाहिशात लज्जात शहवात इन चीजों से, इसमें अट्रैक्शन है, लोग भागते हैं इसकी तरफ। नेकी का काम है उसके अंदर कुछ करना पड़ता है, अल्लाह का काम, उसके रसूल का काम, कुरान को सीखना, ये कुछ कहता है हमसे, कुछ डिमांड करता है, उनमें वो कुछ नहीं कह रहे होते, बस मस्त हो जाओ, ये मुश्किल लगता है लोगों को, वो आसान लगता है, उसमें मजा भी है फन भी है, क्यों ना जाए। और अगर दीन के नाम पे है तो फिर तो बड़ा ही अच्छा हो गया, दीन से भी फारिग हो गए और सवेरे हमने अटेंड कर लिया तो फरागत है, बैठ के मिलाद कर लिया, नाते सुन ली और सर धुल लिया, बड़ा मजा आ गया, कुछ करने को थोड़ी कहा गया, तो अच्छा है चलो, ऐसा दीन सबको अच्छा लगता है, और जो दीन कुछ करने को कहता है ना, बदलने को कहता है, वो नहीं अच्छा लगता, वो मुसीबत लगने लगता है, इसलिए लोग उसे भागते हैं। तो अगर यही दीन होता तो फिर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यही करा के तो फिर मसला क्या था, वहां पे तो कोई इतनी मुश्किल ही नहीं होनी, यही करा दिया जाता वहां पे, मिलादें हो जाती, उर्स मेले हो जाते, चादरें चढ़ा दी जाती, कुंडे मुंडे हो जाते, धमाल धमूल डाल लेते लोग, फिर मुश्किल क्या थी इसके अंदर। प्रॉब्लम ही तब आता है जब इंसानों को कहा जाता है अपने आप को बदलो, अल्लाह की इताअत में आओ, अल्लाह की बंदगी में आओ, फरमाबरदारी की तरफ आओ, छोड़ो इन चीजों को, तब वो कहता है हाय कैसे छोड़ो। ये उनका हाल था। तो इन अक्सरियत इनकी देखोगे भाग भाग के जाते हैं गुनाहों के अंदर, ज्यादती के कामों में, और अकली ही मुस्तहत, हराम खाने में वो माहिर है, वो फर्क ही नहीं पड़ता। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगों पे ऐसा जमाना आएगा कि उनको परवाह ही नहीं होगी कि हलाल है कि हराम है, जो मर्जी है खाते जाओ, आ रहा है ना कहीं से, कहते बड़ा भाई अल्लाह ने बड़े रंग लगा दिए, अल्लाह ने हाथ पकड़ लिया, बस जी क्या बताएं, इसी को कामयाबी समझते हैं।
रिश्वत से आ रहा है माल, बेईमानी से आ रहा है, लूट खसूट का है, मिलावटें करके है, जो मर्जी करके है, किसी को धोखा दे के है, झूठ बोल के है, कोई परवाह नहीं। साफ ही कहते हैं इसके बगैर तो काम ही नहीं चलता, रिश्वत के बगैर। किसी ने कहा था, उसके एक किसी को ईमेल भी आई थी, उन्होंने कहा देखिए आज के दौर के अंदर रिश्वत के बगैर जॉब ही नहीं मिलती, तो हमें देनी पड़ती है रिश्वत अगर नौकरी करनी है तो, वरना नहीं मिलेगी। यानी ये हाल हो गया, तो हराम खाने में होशियार है, हराम कारोबार में भाग भाग के करते हैं। लबिक समा कैनू या मलून, कितना बुरा है जो ये करते हैं, कि इनकी दौड़े होनी क्या चाहिए। वसारियो इला मगफिरतिन मिन रब्बिकुम व जन्नतिन, और कुरान कहता है युसारियूना फिल खैरात, फस्तबिकुल खैरात, ये कहता है दौड़े लगाओ, मुकाबले करो नेकियों के अंदर। इनकी दौड़े किस तरफ को, हमारी दौड़े किस तरफ को है, हम दौड़ते किस तरफ को है, भाग भाग के किधर को जाते हैं, हमारा दिल किधर लगता है, हमें मजा कहाँ आता है। आज तो दीदा दलेरी है ना, कुछ शर्म भी नहीं आती। तो युसारियूना फिल इस्मि वल उदवान व अक्लिहिम अस-सुहत। हमारे टीचर एक दफा बता रहे थे, उन्होंने कहा कि एक जगह वो दर्स के लिए गए, कहते हैं इसी घर वाले भी उनके चले गए घर से, जिसने बेचारे ने रखा था वो एक बंदा और उनके वालिद साहब, कहते वो भी इतने शर्मिंदा थे कि हद से ज्यादा, तो कोई भी नहीं आया। तो उन्होंने कहा हम तीन ही बस फिर लोग हैं, तो मैं आपको ही दर्स दे देता हूँ फिर, और क्या। तो ये हाल है, और आप इसके बरक्स दूसरी मजलिसें रखवा लें, कवालियां करा लें, आप देख लें फिर आप कितने लोग आते हैं, मजा आएगा ना उसमें, सब बैठेंगे। इसको आज दीन बना दिया, इसी चक्करों के अंदर हम, ये बस दीन हो गया, इसका काम हो गया, ये सुन ली बस मुकम्मल दीन है। लौला यनहाहुम रब्बानीयून वल अहबार अन कौलिहिमुल इस्म व अक्लिहिमुस सुहत, ये इतनी सख्त आयत है ना, इतनी सख्त आयत है इल्म वालों के लिए, कि पूरे कुरान में इससे ज्यादा सख्त आयत नहीं है। जो अल्लाह वाले रब्बानी और खुद को इल्म वाले या आलिम कहलाते हैं ना, उनके लिए अल्लाह ताला ने उनको कहा क्यों नहीं ये मना करते इनको, इन लोगों को गुनाहों से, गुनाहों की बातों से इनको क्यों नहीं मना करते, हराम खाने से इनको क्यों नहीं मना करते ये लोग। यानी इतनी सख्ती इनको कही गई, यानी इनका कसूर उस माशरे के चोर डाकुओं से भी ज्यादा है, ये एक तफसीर में लिखा होता है, उनसे भी ज्यादा, इसलिए कि इनका कसूर ये है कि ये अपने अल्लाह अल्लाह लगे हुए, इनको पास इल्म भी है सब कुछ भी है, उनको तो मना नहीं करते कि तुम ये क्या करने लगे हुए हो, तुम्हारी तुम्हारी तो जिम्मेदारी ये थी कि तुम लोगों को बुराइयों से रोकते, ये तुम्हारी जिम्मेदारी थी, लोगों को गलत कामों से टोकते, कहते कि ये गलत है, वो माने या ना माने वो उनके बाद की बात है, तुम्हारी ये जिम्मेदारी थी। आया था ना पीछे भी मस्तफिजू मिन किताबिल्लाह, कि ये तो तुमने, तुम्हारी इनकी जिम्मेदारी थी रब्बानी उनकी अखबार की, इन उलमा की, कि ये हिफाजत करें अल्लाह की किताब की। हिफाजत सिर्फ सिर्फ ये नहीं है कि हिफाजत वैसे उसके अल्फाज की हिफाजत, इसके माने की भी हिफाजत करें, लोगों को बताएं कि इसमें क्या है, लोगों को बताएं ये गुनाह है। लेकिन वो खुद ही बताना उन्होंने क्या था, वो खुद ही करप्ट हो गए, जिसके जिम्मे घर की हिफाजत की जिम्मेदारी लगाई जाए, अगर वो ही घर में ढाके डालना शुरू हो जाए तो फिर किसी और को क्या कहना। जो इनको रोल प्ले करना था, ये तो खुद ये काम करने शुरू हो गए, ये खुद हराम खाने लगे, लोगों से नजराने लेने लगे। पहले हमने बात पढ़ी है ना, ये इन्होंने क्या किया, ये सुहत खाने लगे, ये यानी हराम, मैंने आपको पहले बताया था, ये पीछे जो आयत गुजरी है कि इन्होंने अल्लाह की आयतों को बेचना शुरू कर दिया, आयत नंबर 42 के अंदर, ये तो खुद झूठ के सुनने वाले और खाने वाले बन गए। तो मलामत उनके ऊपर इसलिए ज्यादा की गई है कि इनका ये काम है कि ये काम करें, ये इनकी जिम्मेदारी है। जब इल्म आ जाता है तो वो तस्बीहां करने के लिए नहीं है कि आप वो कोने में बैठ के तस्बीह करें, हम तो हम भाई हमें क्या फर्क पड़ता है, जो मर्जी दुनिया करती रहे, हम तो अपनी अल्लाह अल्लाह करेंगे भाई, ये नहीं है। फिर वो इल्म अब आया है तो अब दूसरे को कहो अमर बिल मारूफ व नहीं अनिल मुनकर करो, फिर बताओ कि नहीं ये गलत है।
वो कहते हैं हम अगर बताएंगे तो फिर हमारी चौधराहट का क्या होगा। आज जैसे वो कहते हैं कि आप हमें डोनेशन दे दें, अगर हमने इनको मना किया ना कि ये आप तो ये गलत काम कर रहे हैं, तो हमें डोनेशन कहाँ से मिलेगा? हमारी मस्जिद को डोनेशन नहीं देंगे, यही तो सबसे ज्यादा डोनेशन देते हैं। तो ये इन साहब का हम ये नहीं कह सकते। और फिर ये भाई हमारे फंक्शंस पे हमें इतना सपोर्ट करते हैं, ये हमारे बड़े मतलब हमारी जेब गरम करते रहते हैं, हमें खाने खिलाते हैं, हमारे काम करवाते हैं, ये इतनी बड़ी पोजीशन के ऊपर बैठे हैं, कल को इनसे काम पड़ेगा, तो हम तो ये नहीं कर सकते कि इनको नाराज करें। लिहाजा हम इनके खिलाफ कोई बात नहीं करेंगे, इनको करते रहें जो मर्जी करते हैं, हराम खाएं जो मर्जी खाएं, हमें बस डोनेशन दिया करें, दैट्स इट। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इसी चीजों से तो मना किया था, तो वो आपके वैर पड़ गए थे कि ये जो तुम शिर्क कर रहे हो ये गलत है। अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी यही कहते कि बस ठीक है कुछ नहीं मैं अपना अल्लाह अल्लाह करता रहता हूँ, जब तक हिरा में बैठ के अपने काम कर रहे थे, अपनी इबादत कर रहे थे, तो कौन मना करता था, करते रहते। प्रॉब्लम ही यहाँ पे आता है ना, तो ये फर्ज है रब्बानियों का और अहबार का, जो अल्लाह वाले हैं, जो दरवेश हैं, जो ऐसे लोग हैं जो अल्लाह के दीन वाले हैं। ठीक है, इसीलिए मैं आपको कहती हूँ ये जो इल्म आप ले रहे हैं ना, इसके बाद फिर हक का बोलना जरूरी है, हक के लिए खड़े होना जरूरी है। फिर ये नहीं है, देखिए वो लोग धड़ल्ले से बातिल कर रहे हैं, बातिल की महफिलें सजाएंगे, बिदतें करेंगे, सब कुछ करेंगे। अगर हक वाले ही सो जाएं, जिनके पास सही इल्म है, तो बेचारी भोली आवाम कहाँ जाएगी जो किसी के पीछे भी चल पड़ते हैं। उन्होंने व्हाट्सएप पे कुछ देख लिया, वो अंधाधुंध वही करना शुरू हो गए। आजकल तो यहीं से दीन लिया जाता है ना, कुछ नहीं पता, बस जो व्हाट्सएप पे आ गया लिखा हुआ उसको अंधाधुंध मानते जाना है। तो वो नहीं है बात, वो आपने कछुए और खरगोश की कहानी सुनी है ना, वो जो खरगोश है उसके पास स्पीड है, वो अगर चार छलांगे मार ले तो वो फिनिश लाइन पे पहुंच सकता है, लेकिन वही अगर सो गया तो फिर क्या होगा? जिन लोगों के पास इल्म है वो काम कर सकते हैं, उनके पास वो टूल है, अल्लाह ताला ने उनको ये मौका दिया है, उनको ये इल्म दे के उनको चूज किया है, लेकिन वो भी अगर सोए ही पड़े रहे, हम क्या कर सकते हैं, हम क्या करें, हम तो कुछ कर ही नहीं सकते, तो चलो ठीक है जो हो रहा होता रहे, फिर कैसे खत्म होगा? वो तो अपनी गलत चीजों का भी, हराम चीजों का भी इतना प्रोपोगेंडा, इतना ज्यादा उसको प्रोपोगेट करते हैं, प्रोपोगेंडा नहीं, प्रोपोगेट करते हैं उसको, इतना उसको सेलिब्रेट करते हैं धड़ल्ले के साथ, इतना उसको उसकी शो ऑफ करते हैं, दिखाते हैं, डरते नहीं है वो, और जो हक वाले हैं वो चुप करके बैठ जाते हैं। आपको पता ही है कि वो हदीस के अल्लाह ताला ने जब जिब्राईल अलैहि सलाम से फरमाया था कि जाओ फलां बस्ती को जाके उसके ऊपर अजाब करो, जिब्राईल अलैहि सलाम ने क्या फरमाया, यार या अल्लाह वहां पे तो एक बंदा है, वो इतना ज्यादा तेरा नाम लेने वाला, तेरी इबादत करने वाला, इतना ज्यादा। अल्लाह ताला ने क्या फरमाया कि उसी के घर से शुरू करो, क्यों? इसलिए कि उसको कभी अल्लाह की हदें तो तोड़ती देखता था, उसने कभी भी उनको मना नहीं किया, उसके माथे पे शिकन नहीं आई, इसलिए उसके ऊपर अल्लाह ताला का गजब ज्यादा था। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस कौम में कोई अल्लाह की नाफरमानी करे और वो लोग कुदरत रखते हैं कि इसको रोक सके लेकिन नहीं रोकते, तो अल्लाह ताला सब पे अपना अजाब नाजिल फरमाएगा। हम कहते हैं हम अच्छे बने रहे, हम क्यों बुरे बने? भाई अच्छे बनने का हमें बड़ा शौक है ना, फिर भी बुरे ही बनते हैं, आप देखना फिर भी बुरे बनेंगे, अल्लाह बुरा बना देगा। इसलिए अल्लाह को नाराज करके जब लोगों को के सामने अच्छा बनने की कोशिश करोगे तो कभी अच्छे नहीं बन सकोगे। एक खुतबे में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया लोगो, सॉरी हजरत अली ने फरमाया एक खुतबे में
अल्लाह ताला की हम्द और सना के बाद हजरत अली ने फरमाया, लोगों तुमसे अगले लोग इसी वजह से हलाक कर दिए कि वो बुराइयां करते थे तो उनके आलिम और उनके अल्लाह वाले खामोश रहते थे, जब ये आदत उनमें पक्की हो गई तो अल्लाह ने उन्हें तरह तरह की सजाएं दी। बस तुम्हें चाहिए कि भलाई का हुक्म दो, बुराई से रोको, इससे पहले कि तुम पे भी वही अजाब आ जाए। वो लोग क्या करते थे, लोगों को मना करते थे, उनके ये बनी इसराइल के ना उलमा लोगों को मना करते थे, जब वो नहीं मना होते थे ना तो फिर उसके बाद उनके साथ ही बैठ जाते थे उन्हीं चीजों के अंदर, फिर माइंड नहीं करते थे, बस एक दफा मना कर दिया काफी था। लबि समा कैनू यसनाउन, कितना बुरा है जो वो करते हैं। सनत से है ना, ये सना सनत होता है ना, जैसे सनत तो हरफत मैन्युफैक्चरिंग करना, तो जब उलमा की बात आई, अल्लाह वालों की बात आई तो यसनाउन आया, जब आम अवाम की बात आई तो फिर या मलून आया। इसलिए कि यसनाउन में क्या है, यानी इंसान कसद के साथ, सनत है ना, कसद के साथ, इरादे के साथ, यानी वो जानता है समझता है उस बात को फिर भी उसको करता है, तो फिर ये यसनाउन है। और वो अवाम उन्नास जो कर रही है वो बिला समझ भी करती जाती है, उनका या मलून है, इनको पता था हमें नजराने नहीं मिलेंगे, हमारे फिर लोग हमारे उस तरह से हिमायती नहीं रहेंगे, जैसे आज भी कोई मेरा फैन नहीं रहेगा, मेरे फैंस कम हो जाएंगे, फॉलोइंग कम हो जाएगी, लोग सुनने नहीं आएंगे मुझे, सारों को खुश रखो बस हमारे बन के रहें। तो जिस कौम में ऐसे हो जाए ना कि लालच की वजह से या बस अपनी शोहरत के लिए या किसी खौफ की वजह से उलमा इस तरह हो जाए, फिर वहां पे अजाब ही आते हैं। अल्लाह अकबर। वकालत यहूद यतुल्लाह मकलूला, ये एक मिसाल है कि ये कितने डिसरिस्पेक्टफुल थे, आज भी ऐसा हाल है, और आज तो क्रिश्चियंस में भी ऐसी चीजें हैं। यहूद ने कहा, हमने पहले भी पढ़ा था ये सूरह आले इमरान, कि इन्होंने कहा कि जब अल्लाह ताला ने फरमाया कि कौन है जो अल्लाह को कर्ज दे, तो उन्होंने आगे से कहा क्यों, अल्लाह फकीर है, अस्तग़फिरुल्लाह नऊज़ु बिल्लाह, और हम अग़निया हैं, हम अल्लाह को देंगे अब क्या, कि वो खुद नहीं दे सकता। तो यहाँ पे भी वकालत यहूद यदुल्लाह मगलूला, यहूद ने कहा अल्लाह के हाथ बंधे हैं, यानी कि वो नहीं दे सकता, बुखल के लिए आता है ना ये चीज, यानी अल्लाह ताला ने अपने हाथ को खर्च से रोका है तो वो हमें कह रहा है कि तुम खर्च करो। और ये इनको जब कहा जाता था ना किसी को दो, तो कहते थे अगर अल्लाह चाहता तो खुद ही उसको खिला देता, हम क्यों दे। तो अल्लाह ताला ने फरमाया गुल्लत ऐदीहिम वलुइनु बिमा कालू, इनके ऊपर लानत इस वजह से, इनकी बदतमीजियों की वजह से, बदतमीजियों की वजह से, कि ये अल्लाह की जात को भी वो मकाम जो अल्लाह ताला का है उस तरह से नहीं देते। अल्लाह ताला ने फरमाया इनके भात बंदे में, कंजूस तो ये खुद है, आप देखिए आज भी पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा कंजूस कौम ये यहूदी है, इनके हाथ बंदे में और लानत किए गए हैं इस वजह से जो उन्होंने कहा, बल यदाहु मबसूता, था नहीं अल्लाह का हाथ तो खुला हुआ है, युनफिकु कैफ शा, वो तो खर्च करता है जैसे वो चाहता है। आप सोचे जब से दुनिया बनी अल्लाह ताला खर्च कर रहा है और कर रहा है और कर रहा है, और उसके खजानों में कोई कमी नहीं आई, और दिन रात का खर्च करना कुछ भी घटाता नहीं है उसके खजानों से, शुरू से लेके आज का तक जो कुछ भी मखलूक को अता हुआ है वो अल्लाह के खजानों से ही हुआ है ना, तो कुछ कमी नहीं आई, तो वो तो खर्च करता ही जा रहा है, वो तो रोज खर्च करता है, वो तो हर पल खर्च कर रहा है, सारी मखलूक कहां से खा पी रही है, कहां से वो सस्टेन अपने आप को कर रही है। वला यजीदन्ना कसीरम मिन्हुम्मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका तुग़याना व कुफ्रा, और नहीं ज्यादा, और अलबत्ता जरूर ज्यादा करती है बहुत सो को इनमें से जो नाजिल किया आपकी तरफ आपके रब ने तुग़यान में और कुफर में, यानी इनको अगर आप मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिका की जगह पे आप यहाँ पे ब्रैकेट में कुरान लिख लें तो अब क्या तर्जुमा है, अलबत्ता जरूर बढ़ा देता है इनमें से बहुत सारे लोगों को कुरान किस चीज में, सरकशी में और कुफर में, यानी कुरान बजाय इसके कि हिदायत इनको इससे मिले, इनको उसे क्या मिलता, सरकशी और कुफर, इसलिए कि इनकी अपनी हालत बिगड़ी हुई है। देखिए एक बीमार को अगर आप देसी घी दे दें और आप बादाम और पिस्ते खिलाना शुरू कर दें जिसका पेट पहले ही खराब है, तो उसका पेट और खराब हो जाएगा। अब हालांकि ये हेल्दी चीजें हैं लेकिन उसको रास क्यों नहीं आ रही, वो बीमार है ऑलरेडी। इसी तरह कुरान तो हिदायत है, ये तो एक शिफा है, लेकिन इन लोगों के लिए जिनके अंदर पहले तुगयानी और कुफर है, बीमार किस्म के लोग, इनको ये भी शिफा नहीं दे सकता, ये भी इनके लिए रहमत नहीं बनेगा, हिदायत का सामान नहीं बनता। युदिल्लु बिही कतीरं व यहदी बिही कतीरा, इस कुरान से ही बहुत सारे लोग गुमराह होते हैं और बहुत सी हिदायत भी पा लेते। कुरान का कसूर नहीं, मुझे किसी ने कहा जब उनको कुरान की तरफ दावत दी, वो कुरान को नहीं जानती थी बिल्कुल, लेकिन उन्होंने एक बात ऐसी की कि मैंने कहा इन्होंने तो बात 100% जो कुरान में है वही की। वो कहने लगी ये जो आप पढ़ाती हैं ये भी उन लोगों को फायदा देता है जिनके अंदर वाकई कोई खैर है। कहने लगी बहुत सारे मैंने कुरान पढ़ने वाले देखे, उनको तो कोई भी नहीं फायदा, वही क्लासे लेते हैं वही सब कुछ करते हैं, उनको तो कोई फर्क भी नहीं पड़ा। तो मैंने कहा इसलिए कि कुरान में कमी नहीं है, ये उनके अपने अंदर कमी है, ये उनकी अपनी जमीन जो दिल की है ना, देखिए जमीनों पे बारिश होती है, हर तरफ बारिश हो रही होती है, कुछ जमीन में से फल फूल निकलती हैं, फसलें निकलती हैं जिससे सारी दुनिया फायदा उठाती है, कुछ जमीन कैसी होती है वो बंजर की बंजर रह जाती है, और कुछ जमीनें ऐसी होती हैं उनसे उल्टे कांटे निकलने लगते हैं, झाड़ झंकार निकलने लगती है जिससे लोगों को तकलीफ होती है। तो बारिश तो सेम है, जमीन का फर्क है। इनकी भी हालत ये थी, वह अलकैना बैनहुमुल अदावत वल बगदा इला यौमिल कियामत, हमने इनके दिलों में दुश्मनी और बुग्ज डाल दिए कियामत के दिन तक। ये बतौर सजा अल्लाह ताला ने इनको सजा दी कि इनके दिलों के ऐसे फट गए, आपस के अंदर भी ये एक नहीं है, ये उदो नसारा में भी बहुत अदावत है, ये बाहर से एक नजर आते हैं लेकिन अंदर से एक नहीं है, अल्लाह ने कयामत के दिन तक इनमें डाल दी। और एक दूसरे के साथ भी देखें, जिस माशरे के अंदर भी ना ऐसी नफसा नफसी हो, ऐसी एक दूसरे के साथ खींचातानी हो, ऐसे ऐसी चीजें हो, वहां पे आपस में भी वो एक नहीं होते, जहां लूट कसूट है, हराम खाया जा रहा है, गुनाहों के ऊपर सारे जमा हुए हैं, वहां पे हमदर्द मुआशरा तो नहीं होगा, वो हर इंसान कहेगा मुझे बस मिल जाए, दूसरे का दुश्मन ही होगा। तो आपस के अंदर भी इनके है और यहूदो नसारा में भी है, कुल्लमा उकदु नारा लिलहर्बि अतफअहुल्लाह, इन्होंने तो बड़ी कोशिशें की कि ये आग भड़काएं जंग की, कभी मुशरिकीन को जाके उभारते थे, कभी किसी को, कभी चाहते थे यहूदियों और मुसलमानों की किसी तरह ठन जाए, कभी जाके औस और खजरज को एक दूसरे के खिलाफ उकसाते थे कि जो है ना देखा वो याद करो ना तुम्हारी जो जंगें हुई थी उनको याद करा के, तो पुरानी बातें कि ये आपस में लड़ पड़े, इतने फसादी थे, जब भी इन्होंने भड़काई आग जंग के लिए अल्लाह ने उसको बुझा दिया। इसी तरह इन्होंने किया था, अंसार जो औस और खजरज थे उनको ऐसी चीजें याद दिलाई वो भड़क पड़े, अभी ये करीब था कि वो तलवारें निकाल के एक दूसरे से लड़ने लगते जब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आ गए। वह यस आउना फिल अर्दी फसादा, ये भागते दौड़ते हैं फसाद करने के लिए जमीन के अंदर, इन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को भी कत्ल करने के लिए जहर दे दिया, औरत ने, यहूदी औरत थी। इसी तरह बनू नजीर ने चक्की ऊपर से, चक्की का पार्ट नीचे उनको बिठा दिया, हम अभी आते हैं अभी डिस्कस करके आप यहाँ बैठे, ऊपर गए ऊपर से चक्की गिराने के लिए कि हम गिरा के उसका पार्ट और इनको नीचे ये क्रश हो जाए। तो अल्लाह ताला ने आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को जिब्राइल अलैहि सलाम के जरिए इत्तला दे दी, वल्लाहु ला युहिब्बुल मुफ्सिदीन, याद रखना चाहे ये हो चाहे दुनिया में कोई भी फसादी हो जो इस तरह के फसाद करते, अल्लाह ताला को फसादी लोग पसंद नहीं। कई औरतें फसादी होती हैं, उनका काम क्या है फसाद कराना, कुल्लमा उकदु नारन लिलहर्बि, ये जैसे यहाँ पे है ना कि उन्हें भड़काई आग जंग के लिए, इस तरह कुछ औरतों का किरदार ऐसा होता है कि वो जंग के लिए आग भड़काती रहती, फ्यूल करती रहती हैं, उसके अंदर डालती रहती हैं कि जो है ना बस किसी तरह लड़ाइयाँ हो जाए, यहाँ पे इस खानदान में लड़ाई हो जाए, फलां फलां से लड़ पड़े, दोस्तों की आपस में लड़ाई हो जाए, मियाँ बीवी आपस में लड़ पड़े, ये लड़ पड़े, ये आराम से क्यों बैठे हैं, इनके अंदर चैन क्यों है, उधर से उधर को कह दिया उसने तो तेरे बारे में ये कर दिया। याद रखें हमने आज पढ़ा है ना कि अल्लाह मोहब्बत करता है किन के साथ, और यहाँ पे ये भी पता चल रहा है कि अल्लाह ताला को नहीं मोहब्बत किन लोगों के साथ, पहले हम पढ़ चुके हैं और बार बार कुरान में आएगा ये भी कि किन से अल्लाह मोहब्बत करता है और किन से मोहब्बत नहीं करता। अल्लाह ताला फसादी लोगों से मोहब्बत नहीं करता जिनको शौक होता है लड़ाइयां कराने का, अब वो माने या ना माने, लेकिन आप देख लें कि अगर आपकी बातों से लोगों के घरों के अंदर लड़ाइयां पड़ती हैं तो क्या है आपका किरदार, फसादी का किरदार है। वैसे हम माइंड करें आए हमें क्यों फसादी कह दिया, लेकिन और ये क्या होता है, अब लगाई बुझाई इधर करना उधर करना, उधर की उधर बता देना, उसको उधर से बदजन कर देना, उसकी उससे नफरत दिला देना, उसका दिल ही खट्टा हो गया, खराब हो गया दूसरे से आपकी बातों की वजह से, तो ये क्या है, फसाद है और क्या है। वो ना भी उससे जाके लड़े, आपने उसका दिल इतना खराब कर दिया, वो दूसरे की शक्ल ही देखना नहीं चाहता। ये क्या है, ये यहूदियों का ये किरदार था। तो ये फसाद वाली तबीयतें अल्लाह को नहीं चाहिए। आज पता चल गया ना कि कौन सी लोग हैं जिनको अल्लाह जिनसे मोहब्बत करता है और किन से नहीं करता। वलो अन्न अहल किताबी आमनु वत्तकू लकफरनाहुम सय्यिआतिहिम वलअदखलनाहुम जन्नातिन नईम। अगर ये अहले किताब भी ईमान लेकर आते, अल्लाह से डर के जिंदगी गुजारते, इनकी जिंदगी की प्रायोरिटी क्या होती कि अल्लाह को राजी करना है और उसको ही ऐसा काम ना करें जिससे अल्लाह नाराज हो। मैंने आपको क्या बताया था तकवा क्या होता है, ये है तकवा की डेफिनेशन। तो हम इनसे इनकी बुराइयां दूर कर देते। सय्यिआत से मतलब गुनाह भी है और सय्यिआत से मतलब मुसीबतें भी हैं। अल्लाह मुसीबतें इनसे दूर कर देता, अल्लाह इनके गुनाह दूर कर देता, धो देता इनके गुनाह और इनको जन्नत में दाखिल कर देता जो नियमतों वाली है। यानी जो ईमान लाके तकवा की रविश इख्तियार करे उसका ये इनाम है। वलो अन्नहुम अकामु तौरात वल इंजील वमा अंजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम। और अगर ये तौरात को कायम करते, इंजील को कायम करते, क्या मतलब होता है कायम करने, यानी इसमें रद्दो बदल ना करते, इफरात और तफरीत ना करते, जैसे है उसको अपने माशरे में उसके मुताबिक चलते, उसको फॉलो करते। वमा अंजिला इलैहिम मिन रब्बिहिम, जो भी इनके ऊपर नाजिल हुआ यानी कुरान भी, इसको अगर ये फॉलो करते, लअकलू मिन फौकिहिम व मिन तहति अर्जुलिहिम, तो वो खाते अपने ऊपर से भी और अपने नीचे से भी। यानी अगर ये शरीयत को नाफिज करते जो इनकी किताबों में थी, और जब कुरान आया तो इसको मान लेते, तो ये ऊपर से भी खाते और नीचे से भी। मतलब क्या है, अल्लाह ताला इनके ऊपर नियमतों की बारिश करता है, खजाने के मुंह खोल देता, जमीन से भी फसलें इनके लिए उगती हैं, आसमान से बारिशें इनके लिए होती। तो अल्लाह ताला इनको यानी खुशहाली अता फरमा देता। आपको पता है ना हदीस में आता है कि अल्लाह की हदों में से, पूरी शरीयत की बात नहीं हो रही, अल्लाह की हदों में से एक हद का कायम हो जाना भी जमीन वालों के लिए 40 दिन की बारिश से बेहतर है। खैर वाली बारिश जो 40 दिन तक होती रहे, खैर वाली बारिश, उससे ज्यादा बेहतर अल्लाह की एक हद का कायम हो जाना। तो पूरी शरीयत नाफिज हो जाए तो कितना बड़ा खैर और बरकत के दरवाजे खुल जाए। लेकिन फिर भी कहा गया मिनहुम उम्मत मुक्तसिदा, उनमें से एक ग्रोह ऐसा भी है जो दरमियाना चलने वाला, यानी ना वो इफरात करते हैं ना तफरीत, ना तो ईसा अलैहि सलाम को खुदा बना दिया, ना उनको वलद जिना कर दिया, ना इस तरफ ज्यादा ना उस तरफ ज्यादा, दरमियाने हैं। पहले भी आया था ना लईसु सवा, सारे ये बराबर नहीं है। इनमें से वो भी लोग हैं जो सीधे चलने वाले हैं, दरमियाना रास्ता इख्तियार करने वाले। वो कौन थे, नज्जाशी, अब्दुल्ला बिन सलाम और इनके जैसे कुछ लोग थे जो ईमान भी ले आए थे। वकथीरु मिनहुम साअ मा यअमलून, लेकिन अक्सरियत इनमें से कैसी है, बहुत सारे इनमें से ऐसे हैं जो तो बहुत बुरा है जो वो अमल करते हैं। यानी कैसे कैसे इन्होंने जो हरकत की, वो ये सारी आपके सामने है जो ये अमल करते रहे, अक्सरियत वैसी है। हाँ इनमें से कुछ ऐसे हैं जो वाकई सही चलने वाले हैं और वो आखिर वक्त तक हक पे ही रहे, लेकिन आप देख रहे हैं कि खैर कितनी ज्यादा है अगर इंसान, जो माशरा, जो लोग अपने हाँ अल्लाह के दीन को, उसकी किताब को नाफिज करते हैं, उसको कायम करते हैं, उनके लिए कितनी बड़ी खैर की खुशखबरी है कि वो खाएंगे नीचे से भी और ऊपर से भी, और जब इसके खिलाफ चलेंगे तो फिर क्या होगा, फिर उलट ही होगा, ना दुनिया में कोई फायदा और ना आखरत में। अल्लाह ताला हमें दीन पर चलने की तौफीक अता फरमाए, और जो आज हमने पढ़ा है अल्लाह ताला इसके कायम करने की तौफीक हमें अता फरमाए। अल्लाह ताला इन खुश नसीब लोगों में हमें भी शामिल फरमा दे जिनका यहाँ पे तذکرہ हुआ, ये खसूसियात हमें पैदा करने की तौफीक अता फरमाए। सुभानक अल्लाहुम्मा व बिहमदिक नशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंत नस्तगफिरुक व नतूबु इलैक। तिलावत सुने।
أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء بعضهم أولياء بعض ومن يتولهم منكم فإنه منهم إن الله لا يهدي القوم الظالمين فترى الذين في قلوبهم مرض يسارعون فيهم يقولون نخشى أن تصيبنا دائرة فعسى الله أن يأتي بالفتح أو أمر من عنده فيصبحوا على ما أسروا في أنفسهم نادمين ويقول الذين آمنوا أهؤلاء الذين أقسموا بالله جهد أيمانهم إنهم لمعكم حبطت أعمالهم فأصبحوا خاسرين يا أيها الذين آمنوا من يرتد منكم عن دينه فسوف يأتي الله بقوم يحبهم ويحبونه أذلة على المؤمنين أعزة على الكافرين يجاهدون في سبيل الله ولا يخافون لومة لائم ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء والله واسع عليم إنما وليكم الله ورسوله والذين آمنوا الذين يقيمون الصلاة ويؤتون الزكاة وهم راكعون ومن يتول الله ورسوله والذين آمنوا فإن حزب الله هم الغالبون يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا الذين اتخذوا دينكم هزوا ولعبا من الذين أوتوا الكتاب من قبلكم والكفار أولياء واتقوا الله إن كنتم مؤمنين وإذا ناديتم إلى الصلاة اتخذوها هزوا ولعبا ذلك بأنهم قوم لا يعقلون قل يا أهل الكتاب هل تنقمون منا إلا أن آمنا بالله وما أنزل إلينا وما أنزل من قبل وأن أكثركم فاسقون قل هل أنبئكم بشر من ذلك مثوبة عند الله من لعنه الله وغضب عليه وجعل منهم القردة والخنازير وعبد الطاغوت أولئك شر مكانا وأضل عن سواء السبيل وإذا جاءوكم قالوا آمنا وقد دخلوا بالكفر وهم قد خرجوا به والله أعلم بما كانوا يكتمون وترى كثيرا منهم يسارعون في الإثم والعدوان وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يعملون لولا ينهاهم الربانيون والأحبار عن قولهم الإثم وأكلهم السحت لبئس ما كانوا يصنعون وقالت اليهود يد الله مغلولة غلت أيديهم ولعنوا بما قالوا بل يداه مبسوطتان ينفق كيف يشاء وليزيدن كثيرا منهم ما أنزل إليك من ربك طغيانا وكفرا وألقينا بينهم العداوة والبغضاء إلى يوم القيامة كلما أوقدوا نارا للحرب أطفأها الله ويسعون في الأرض فسادا والله لا يحب المفسدين ولو أن أهل الكتاب آمنوا واتقوا لكفرنا عنهم سيئاتهم ولأدخلناهم جنات النعيم ولو أنهم أقاموا التوراة والإنجيل وما أنزل إليهم من ربهم لأكلوا من فوقهم ومن تحت أرجلهم منهم أمة مقتصدة وكثير منهم ساء ما يعملون